गजेंद्र मोक्ष की कथा को सुनने का आग्रह किए हैं। भगवान हरि किस प्रकार गजेंद्र को ग्राह से छुड़ाए मैं सुनना चाहता हूँ। और इस कथा के विषय में श्रील सुखदेव गोस्वामी से महाराज परीक्षित कहते हैं कि इस कथा को जो कोई व्यक्ति सुनता है तो वह पुण्य प्राप्त करता है। पुण्य के दो अर्थ, एक तो वह सब प्रकार की अशुद्धि से मुक्त हो जाता है और दूसरा उसके पास से स्वर्ग प्राप्ति के लिए पुण्य अर्जन हो जाता है। आप लोग ध्यान रखिए कि कथा के समय कोई यहाँ न आए, कथा के समय यहाँ पर कोई कुछ भी अर्पण करने के लिए न आए, वहीं से मना करते रहे। महत्पुण्यम, महान पुण्य। इस प्राकृत जगत में बहुत से ऐसे स्थान हैं और बहुत सी वस्तुएं हैं जो पुण्य से प्राप्त होती हैं, जैसे स्वर्ग। तो सबसे बड़ा पुण्य है भगवान की कथा सुनना। भगवान श्रीहरि की कथाओं को सुनने वाला व्यक्ति स्वर्ग तो सहज में ही प्राप्त कर लेता है, उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता और कुछ भी। जिस स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ते हैं, बहुत बड़ा दान देना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, तीर्थ सेवन करना पड़ता है, उस स्वर्ग के सुख को सहज ही भगवत कथा के श्रवण से प्राप्त किया जा सकता है। पुण्य बनता। और धन्यम, धन्यम का अर्थ है इस कथा को कहने और सुनने पर धन की वृद्धि होती है, धन वृद्धि करम। कोई प्रश्न कर सकता है क्या बिना कमाए धमाए धन बढ़ेगा? हाँ, बिना कमाए भी धन बढ़ सकता है, इस कथा का यह प्रभाव। और स्वस्तैनम, और भी जो व्यक्ति कार्य करना चाहता है इस संसार में तो उस कार्य में वो सफल होता है, इसको स्वस्ति कहते हैं, कल्याण होता है, तथा परिवार ठीक से चलता है और शरीर स्वस्थ रहता है, इसको शुभम कहते हैं। इस कथा की विशेषता, धन बढ़ता है, परिवार ठीक से रहता है, शरीर स्वस्थ रहता है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है, बहुत ऊंचे ऊंचे पद मिलते हैं। इस वक्तव्य को, इस प्रश्न को सुनकर श्रील सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए और वे इस प्रकार ऋषियों की सभा में इस कथा को प्रारंभ कर रहे हैं और संबोधन करते हैं महाराज परीक्षित को। हे महाराज, हे राजन, त्रिकूट इति विश्रुत गिरवर आसित अस्ति है। हे महाराज परीक्षित, एक बहुत ही श्रेष्ठ पर्वत है जिसका नाम है त्रिकूट, और यह बहुत ही विख्यात पर्वत है इस ब्रह्मांड के भीतर। विश्रुत, विशेषण श्रुत, श्रुता का अर्थ जिसके विषय में बहुत सुना गया है, बहुत बातें प्रचलित हैं, तो बहुत ही विख्यात श्रेष्ठ पर्वत है जिसका नाम है त्रिकूट। कहां पर यह है? तो वे कहते हैं क्षीरो देना वृत, क्षीरो देना, क्षीरो क्षीर समुद्र से घिरा हुआ है, इसका अर्थ है कि क्षीर समुद्र के बीच में है, उसके चतुर्दिक क्षीर समुद्र है और उसके बीच में वह पर्वत। लोकेशन बता रहे हैं, स्थिति जहां भगवान की यह लीला हुई है, जहां गजपति गजेंद्र जी रहते थे और भगवान जिस स्थान पर आकर के उनका उद्धार किए थे, उस स्थान का स्मरण करें। क्षीरो देना वृत, इस तरह से सिद्ध हुआ कि यह पर्वत अत्यंत पावन पर्वत है और इसीलिए विश्रुत, विशेषण श्रुत, विख्यात, क्षीर समुद्र से घिरा हुआ है। शिरो देना रहता श्रीमान और ऊपर से श्रीमान लगा रहे, गिरिवरह श्रीमान। श्रीमान का अर्थ है कि अत्यंत समृद्ध, इसमें स्वर्ण माणिक्य आदि रत्न है और उस फल आदि की संपत्ति भरी हुई है, पशु पक्षी सब प्रकार के बहुत ही सुंदर सुंदर हैं। इस कारण से यह श्रीमान है, श्री से युक्त है, बहुत सुंदर पर्वत। तब उसके साइज बता रहे हैं, योजनायुत योजनायुतम उच्छित, अयुत का अर्थ है 10,000, 10,000 और योजन का अर्थ होता है 4 कोस, लगभग 8 माइल। तो 10,000 योजन ऊंचा है यह पर्वत क्षीर समुद्र में। कितना हो गया 10,000 योजन? 80,000 माइल ऊंचा है यह है पर्वत का साइज, और मध्य से वह चारों तरफ इतना ही फैला हुआ है। 10,000 इधर फैला है, 10,000 चारों तरफ, 10,000 योजन फैला हुआ है पर्वत क्षीर समुद्र में। जितना ऊंचा है उतना ही बीच से चारों तरफ फैला हुआ है, ये उसका आकार बता रहे हैं। आसित गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरो देना व्रत श्रीमान योजना युतमुच्छ्रितः। जब गजेंद्र का भगवान ने उद्धार किया तो उस समय उन्होंने प्रवचन किया देवताओं की सभा में उस पर्वत पर, ये मान ताम तो सरस छेदम गिरी कंदर कानन बेत्र कीचक वेणु नाम गुलमानी सुरपाद पान। कोई भी व्यक्ति जो मेरा तुम्हारा इस पर्वत का, यहाँ के बगीचों का, पौधों का, कंदर आदि का जो स्मरण करेगा वह मुक्त हो जाएगा, उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो बहुत पवित्र पर्वत, और विशेष करके जब भगवान वहां आविर्भूत हुए अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, तब वह स्थान कितना धन्य हुआ होगा इसको तो सहज समझा जा सकता है। तो अतः जब भगवान ने बाद में कहा है कि इसका स्मरण करना चाहिए, तो स्मरण करने के लिए श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, बिना वर्णन के स्मरण नहीं हो पाता है। कोई पर्वत का वर्णन न करे कह दे त्रिकूट का ध्यान कीजिए, क्या ध्यान करेगा? और राजस्थान के जो पर्वत देखा है बिना पेड़ पौधा के उसी का स्मरण करेगा, तो वही तो मन में धंसा हुआ। उस पर्वत का वर्णन इसीलिए किया जा रहा है, भगवान के लीला का रंग मंच, इसलिए श्रील सुखदेव गोस्वामी बड़े विस्तार से वर्णन किए हैं। कभी कभी भक्त लोग कहते हैं अरे ये बहुत पेड़ पौधा पर्वत ये सब जाल वर्णन किया गया, जाल नहीं है, भगवान की लीला का उपकरण है। तो आशित गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरो देना व्रत श्रीमान योजना आयुत में उच्छितः। क्षीरोद से आदृत पावता विस्तृत पर्यक, पावता अयुत योजने न 10,000 योजन ही चारों तरफ फैला हुआ है, तावता विस्तृत पर्यक चारों तरफ फैला हुआ है। तावता का अर्थ है योजना युतेन पर्यक परित, चारों तरफ उतना ही विस्तार से फैला हुआ है। त्रिभि श्रृंगई और अपने 3 सिंहों से शिखरों से समुद्र को, दिशाओं को और आकाश को रोचन सुशोभित करता है। वह पर्वत इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि अपने विशाल 3 शिखरों से वह आकाश को भी जगमग करता है। आकाश में उसके शिखर हैं, बहुत विशाल विशाल शिखर, बहुत चौड़े शिखर, उसके अन्य भी शिखर हैं लेकिन 3 मुख्य हैं, तो 3 का यहाँ वर्णन करते हैं। त्रिभि श्रृंगई अपने 3 शिखरों से पयोनिधिम रोचयन, ककुभा रोचयन और खम रोचयन आस्ते सुशोभित करता हुआ विद्यमान है वह पर्वत। श्रील सुखदेव गोस्वामी इस तरह से उस पर्वत का ध्यान कर रहे हैं और वर्णन रौद्रायस हिरणमय, ये तीन शिखर किस वस्तु से बने हुए हैं, कौन कौन प्रधान है वहां। एक शिखर चांदी का है तो रजत मुख्य है उस शिखर में, चारों तरफ पत्थर नहीं है रजत है। जैसे इधर हम लोग पर्वत देखते हैं तो इसमें अधिक से अधिक अगर महिमा में पर्वत है तो संगमरमर मार्बल निकलता है, राजस्थान में बहुत निकलते हैं मार्बल, लेकिन चांदी की चट्टाने हो और पूरा पर्वत ही चांदी का बना हो ऐसा नहीं देखते हैं। अब तो बहुत अधिक एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ के पर्वतों को फोड़ फोड़ करके कमा रहे हैं, पर्वतों की सारी शोभा नष्ट हो चुकी है। धीरे धीरे पता नहीं मानव सभ्यता किस कगार पर पहुंचेगी, कुछ भी नहीं बाकी रह जाए। तो वह पर्वत तीन शिखरों से विभूषित है और एक शिखर रजत का है, रौप्य भी कहते हैं उसको, और दूसरा आयस लोहे का शिखर और तीसरा सोने का हिरणमय। तीनों के तीन रंग है, रजत जो शिखर है वो बिल्कुल व्हाइट बिल्कुल श्वेत है और लोहा काला काला सांवला और सोना बिल्कुल पीत वर्ण। इस तरह से अपने शिखरों से सबको जगमग करता है। अन्यश्च ततुभ सर्वा रत्न भात विचित्रितैः, और अन्यश्च इन तीन शिखरों के अलावा अन्य शिखरों के द्वारा भी अन्यश्च त्रिभी पहले वर्णन किया और कहते अन्यश्च अन्य शिखरों के द्वारा भी ककुभा सर्वा समस्त दिशाओं को वह रोचयन आस्ते पूर्व से अन्वय समस्त दिशाओं को जगमग करता है वह पर्वत रत्न धात विचित्रित ही। और भी जो शिखर हैं वे रत्नों के बने हुए हैं और धातुओं के बने हुए हैं, रत्न ही धातुभिश्च विचित्रित ही विचित्रित ही भिन्न भिन्न वर्ण के शिखर हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के रत्न और धातुएं हैं, इसके कारण वो विचित्रित लगता है, अनेक रंग का अनेक शोभा से युक्त है। नाना द्रुमलता गुलमय निर्घोष निर्जयराम भस्याम, अन्य श्रृंगई और निर्जयराम भस्याम निर्घोष ककुभ सर्वा रोचयन अस्ति पूर्वेण एव अन्वय। उस पर्वत की विशेषता बता रहे हैं कि तीन तो प्रधान शिखर हैं, उनसे तो सबको सुशोभित करता ही है और अन्य भी शिखर हैं रत्न धातु विचित्र सहित उनसे दिशाओं को शोभित करता है। इसके साथ ही साथ निर्झराम भसाम निर्घोषश्च उस पर्वत में अनेक झरने झरते रहते हैं गिरते रहते हैं, आज के युग में स्प्रिंग वाटर लिखते हैं लोग, आज स्प्रिंग वाटर बोतल में पी रहे हैं वो भी सुलभ नहीं, पहले के लोग पर्वतों से झरते ही झरनों के जल पीते रहते थे, अब तो सब सूखते जा रहे हैं झरने, वर्षा हो ही नहीं रही। तो त्रिकूट पर्वत अनेक प्रकार के निर्झरों के जल के निर्घोष से युक्त रहता है और इस कारण से सारी दिशाएं बहुत सुंदर लगती हैं। तो रंग से उस पर्वत की शोभा से और पर्वत में जो ध्वनि होती है झरझर 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 कलकल निनाद, उसे दिशाएं बहुत सुंदर लगती है, अच्छा लगता है सुनने में, बहुत अच्छा लगता है और देखने में बहुत अच्छा लगता है। निर्घोषश्च ककुह सर्वा रोचयन आस्ते इति पूर्वेण अन्वय, पहले क्रिया के साथ इसका अन्वय करना पड़ेगा कि इस प्रकार से निर्झरों के झरनों के निर्घोष से और अन्य नाना रत्न धातु विचित्रित श्रृंग सर्वा ककुभ रोचयन आस्ते। कथम भूत श्रृंग रत्न ही धातु विचित्रित, और इसके साथ ही साथ नाना विधानाम द्रुम लता नाम गुलमा जेसु तय, नाना द्रुमलता गुलमयर निर्घोषर निर्जरांध श्याम। शिखरों की विशेषता बता रहे हैं, नाना द्रुमलता गुलमयी और निर्घोष है। त्रिकूट पर्वत के जितने भी शिखर हैं उनमें अनेक प्रकार के वृक्ष, अनेक प्रकार की लताएं और इनके गुल्म संदर्भ भरे पड़े हैं। वह पूरा पर्वत ही वृक्षों से और लताओं से घमासान भरा हुआ है। कहने का आशय यह, गुल्म का अर्थ लता संदर्भ। वृक्षों से वह पर्वत भरा पड़ा है और निर्झरों से, रत्नों से, धातुओं से। सचाव निज्यमान अंग्री समंता पर उर्मिधि करोति श्यामलां भूमिं हरिन मरकताश्मभिः। उस पर्वत में हरिन मरकताश्मभिः पलाश वर्ण के हरे हरे मरकत मणि की चट्टाने हैं। मरकत मणि की बहुत लंबी लंबी चट्टाने हैं। इस कारण से जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है वह प्रकाश फिर प्रतिबिंबित होकर के समुद्र पर पड़ता है या आसपास की भूमि पर, तो करोति श्यामलां भूमिं हरिन मरकताश्मभिः, आसपास के जमीन को यहाँ तक कि धवल क्षीर समुद्र को भी वह श्यामला बना देता है। देखने में श्यामला लगता है क्योंकि श्यामला श्यामली छटा प्रतिबिंबित होती है चारों तरफ। इससे यह सिद्ध हुआ कि उस पर्वत में मुख्य रूप से मरकत मणियां हैं, मरकत पत्थर हरित वर्ण के, और उस पर्वत के चरण, चरण मतलब प्रांत भाग, सचाव निज्यमान अंग्री समंतात पर उर्मिधि, पयसह उर्मिधि समंतात अवनिज्यमाना अंग्रयो मूल प्रांता जस्य। ऐसा लगता है कि क्षीर समुद्र उस पर्वत के चरण को हमेशा पखारता रहता है। अवनिज्यमाना अंग्रयो जस्य, जब क्षीर समुद्र की तरंगे टकराती हैं पर्वत से तो श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उसके चरण मानो धोए जाते हैं क्षीर समुद्र द्वारा। तो कितना भाग्यशाली पर्वत, उसके चरण धोए जा रहे हैं। चरण का अर्थ मूल प्रांत, जो जमीन पर टिके हुए हैं, चारों तरफ से ऊंची ऊंची तरंगे उठती रहती हैं क्षीर समुद्र में और उससे टकराती रहती हैं चारों तरफ उस पर्वत से। ऐसा लगता है कि उसके चरण को क्षीर समुद्र धो रहा है। अवनिज्यमान चावनिज्यमान अंग्री, चावनिज्यमाना अंग्री, चावनिज्यमान अंग्री समंतर पय उर्मिधि। किस तरह से धोया जाता है? दूध की लहरों से उस पर्वत चारों तरफ से धोया जाता है। ध्यान रखना चाहिए कि क्षीर समुद्र में जो क्षीर है, जो दूध है, वो यहाँ जैसा नहीं है कि 10-12 घंटे में सड़ जाएगा, दुर्गंध आने लगेगी। वह अमृत है, दिव्य है, साधारण दूध नहीं है। भगवान विचित्र विचित्र जगत का निर्माण किए हैं और वे दूध के समुद्र में सोते हैं भीतर क्षीरोदसाय। भगवान की बहुत ही विलक्षण विलक्षण सृष्टि है, अद्भुत ढंग के पर्वत बनाए हैं, अद्भुत समुद्र, अद्भुत नदियां। हम लोगों का अनुभव केवल यह है कि नदियों में जल बहता है, परंतु स्वर्ग की नदियों में मधु बहता है, दूध बहता है, दही बहता है, बिल्कुल फ्रेश जूस बहता है। और हम राजस्थान की नदियों में तो केवल बालू देख रहे हैं, यहाँ तो पानी भी नहीं, कोई पानी का पता ही नहीं। आज के लड़के जन्म लेंगे और नदियों को देखेंगे तो यही सोचेंगे कि नदियों में केवल बालू होता है, रेता होता है और कुछ नहीं। उसी प्रकार हम लोग केवल जल देखे हैं नदियों में, तो स्वर्ग की नदी की कल्पना करेंगे तो सोचेंगे कि वहां भी इसी तरह जल होगा और वो भी पॉल्यूटेड हो गया होगा यही कल्पना करेंगे। परंतु भगवान विचित्र वस्तु बनाए हैं, क्षीर समुद्र, दूध का समुद्र। एक कवि ने लिखा है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने माँ की गोद में जो बच्चा थे खेल रहे थे, तो वे चंद्रमा को पाने का हठ करने लगे, मैया चंद्र खिलौना लई हूँ, चंद्रमा को ला दो, चंद्रमा को ला दो, खेलूंगा खेलूंगा खेलूंगा। तो बड़े हठ कर रहे थे, तो माँ ने एक युक्ति निकाला मना करने के लिए। तो कहा बेटा उसके साथ मत खेलो, वो जो काला काला धब्बा है, कलंक है चंद्रमा में, वो विष है, क्योंकि विष इसका भाई है। विष भी समुद्र से निकला था और चंद्रमा भी निकला था, तो काला विष है, उसको छूते ही मर जाओगे, इसलिए तुम उसको मत मांगो। तो श्री कृष्ण सो रहे थे उस समय, माँ के गोद में पूछने लगे, किसने समुद्र मंथन किया था, दूध का समुद्र है? तो माँ ने कहा हाँ हाँ दूध का समुद्र है। तो कृष्ण कहते कितनी गायों ने मिल करके दूध दिया था, ये समुद्र बन गया। और तो माँ को परेशान हो गई, यशोदा कहती है कि अरे बेटा वो बिना गाय के ही दूध बना है। तो श्री कृष्ण कहते हैं बिना गाय के दूध कैसे बन सकता है? माँ कहती है जो गाय में दूध बनाया है वो बिना गाय का दूध नहीं बना सकता है। तो कृष्ण कहते हैं हाँ ठीक कहते, क्यों मथा था समुद्र को? केवल देह को छूने का अवगत भाग जाए। तो इस तरह से भगवान लीला करते हैं। एक विचारणीय बात है कि क्षीर समुद्र में दूध आया कहाँ से, और वह क्षीर समुद्र इस खारे समुद्र की अपेक्षा कई गुना बड़ा है, जिसमें दूध ही दूध, दूध ही दूध, दिव्य अमृत भरा पड़ा है। और यह समुद्र अपनी उतार तरंगों से त्रिकुट पर्वत के चरण को पखारता रहता है, इतना महिमा न पर्वत। स्वचावनिक जीवान समानता तय उर्मिधि, तय उर्मिधि, तय शब्द का जल भी होता है, तय का दूध होता है, पयस उर्मिधि, तय के नीले से इसके चरण पखारे जाते हैं। करोति श्यामलाम भूमि हरि मरकटाश्रय, अपने हरे हरे मरकत मणियों से, मरकत मणि के चट्टानों से वह पर्वत अपने आसपास की भूमि को श्यामलाम करोति, सांवला बना देता। क्या है ध्यान? शोभा उस पर्वत की, सिद्ध चारण गंधर्व विद्या धर्म हो रही किन्नर अक्षर अभिश्च क्रीर जुष्ट कंद रहा। उस पर्वत की कंदराएं गुफाएं ऐसी हैं जिनमें सिद्ध चारण गंधर्व विद्याधर और महानागगण यदि देवताओं की जाति तथा किन्नर और अप्सराएं विहार करती हैं। मनुष्य की पहुंच नहीं है वहां पर, ये समझ लेना चाहिए। इस ब्रह्मांड में बहुत ही उच्च कोटि के जो जीव हैं, केवल उन्हीं अधिकार है उस पर्वत में जाने का। क्रुद्ध जुष्ट कंदर ये सब खेल करते हैं, विहार करते हैं, आते रहते हैं, और विहार में भगवान का कीर्तन ही मुख्य होता है। सिद्ध चारण गंधर्व किन्नर अप्सराएं आते हैं, विहार करते हैं, भगवान की विविध लीलाओं को गाते हैं, और विशेष करके गुफाओं में थोड़ा कम की। गुफाओं में भगवान की लीला इसलिए गाते हैं कि मरकट मणि की चट्टानें भी प्रतिध्वनित होती हैं, तो कीर्तन बहुत जमता है, भगवान का गुणगान बहुत अच्छा लगता है। आज भी कुछ बच्चे जाते हैं पर्वत के पास तो कुछ बोलते हैं तो पर्वत भी प्रतिध्वनि करता है, बोलता है, तो चारों तरफ भगवान का गुणगान टकराता है। तो शुद्ध चारण गंधर्व विद्याधर किन्नर और अप्सराएं ये बहुत ही पवित्र लोग हैं जिनका जीवन भगवान के गुणगान में डूबता है, बहुत पवित्र। ये लोग उस पर्वत पर जाते हैं, उस कंदराओं में क्रीड़ा करते हैं। क्रीड़ा का अर्थ है सुख विहार, और सुख विहार का अर्थ है भगवान का कीर्तन गुणगान करते रहते हैं।
इस तरह से पर्वत धन है, इसके कंदराओं में क्रीड़ा करते हैं और कंदरा एक उपलक्षण है, इधर उधर वन में चारों तरफ विहार करते हैं सुख से रहते। इस पर्वत पर निवास करने वाले या घूमने वाले लोग भी बहुत ही पुनीत है, महान है, इस बात को इस श्लोक में कहा गया। यत्र संगीत संगादर मदद गुह ममर्षया अभिगर्जन्ति हरवः श्लाघिनः परशङ्कया। किन्नर अप्सराएं विद्याधर चारण गंधर्व आदि जो वहाँ संवाद करते हैं, सम्यक नाद भगवत जस का गान करते हैं, तो यह गान इतना सुंदर फैलता है और गुफाओं में और जहाँ तहाँ उसकी प्रतिध्वनि होती है, आवाज फैलती है, तो जिस प्रदेश से आवाज आती है उस प्रदेश के तरफ मुंह करके सिंह दहाड़ने लगते हैं। उन्हें शंका होती है कि कोई सिंह दहाड़ रहा है, और एक सिंह दहाड़ता है तो दूसरे सिंह भी दहाड़ने लगते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमारे प्रतियोगिता में सिंह दहाड़ रहा है। तो सब जगह प्रतिध्वनि होती रहती है, सिंह दहाड़ते रहते हैं। क्यों क्यों दहाड़ते हैं? अमर से असहनी न, एक सिंह को सहन नहीं होता है दूसरे सिंह का दहाड़ना। लेकिन मूल में कुछ सिंह क्यों दहाड़ते हैं? क्योंकि गुफाओं में भगवान का कीर्तन होता है, जश गान होता है, आवाज होती है, तो ये समझते हैं कि कोई सिंह दहाड़ रहा है और इस कारण से ये आवाज करने लगते है। मदद गुहम अमर सया अभिगर्जन्ति हरया, हरि का अर्थ सिंह, हरया सिंहा, अभिगर्जन्ति खूब अच्छा से गरजने लगते, श्लाघिनम परसन गया श्लाघिनम, क्योंकि प्रत्येक सिंह है ऐसा मानता है कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, बलवान हूँ, और पर शंकर दूसरा सिंह दहाड़ रहा है, बोल रहा है, इस शंका से ये दहाड़ने लगते बोलने लगते। तो सिंह है उस पर्वत पर है बहुत मात्रा में और वे दहाड़ते रहते। यत्र संगीत संनाद मदद गृहम वर्षया, संगीत का संनाद होता है, सुंदर गीत का सुंदर स्वर, संगीत संनाद मदद गृहम, वहाँ की गुफाएं कंदराएं मदद मदद भी गुहा ध्वनि होती रहती है, और उसको सुन करके सिंह होकर शंका होती है, पर शंका दूसरा सिंह दहाड़ रहा। तो इस तरह से वह पर्वत सिंह की दहाड़ों से युक्त है, निर्झरों के जल की ध्वनि से युक्त है, अनेक प्रकार के रत्नों से, चट्टानों से, मरकतमणि की चट्टानों से सुशोभित। देवता इस पर्वत पर विहार करते रहते हैं, भगवत जस गाते रहते हैं और आगे वर्णन करते हैं। मानारण्य सुव्रत संकुल द्रंग अलंकृत चित्र द्रुम कलकंठ भृंगम, नाना ये आरण्य पशव तेषां व्रत संकुलाभिर्द्रंगी अलंकृतम आस्ते। वह पर्वत और कैसा है कि नाना रंग पशु व्रत संकुल द्रंग अलंकृत, नाना अनेक प्रकार के आरण्य पशु जंगली पशु वहाँ रहते हैं, वन में रहने वाले पशु, और ये झुंड के झुंड है, उनके ब्रात उनके समूह से संकुल द्रोणी उस पर्वत की घाटियां उस पर्वत की द्रोणियां भरी रहती हैं, अलंकृत रहते हैं। किसी पर्वत के द्रोणी की शोभा वास्तव में पशुओं से है। द्रोणी का अर्थ होता है पर्वत के लंबे लंबे शिखर और ऊंचे ऊंचे भाग एक तरफ फैले रहते हैं इधर उधर, और बीच में बहुत बड़ा मैदान होता है, क्षेत्र होता है, उसको द्रोणी कहते हैं। वह घास से भरा होता है, वृक्षों से भरा होता है, बहुत सुंदर लगता है, उसको द्रोणी कहते हैं। तो उस पर्वत की जितनी भी द्रोणियां हैं वे सब नाना रण पशु व्रात संकुल, अनेक प्रकार के आरण्य पशु, आरण्य पशु कहते हैं अरण्य के पशु, जंगली पशुओं से वो उसकी द्रोणियां भरी पड़ी अलंकृत। वह पर्वत अलंकृत है, सुशोभित। जिस पर्वत पर पशु ही न हो वह पर्वत शोभा नहीं दे सकता। न घास है, न झाड़ है, कुछ नहीं। आजकल के पर्वत ऐसे होते जाते हैं, मनुष्य वृक्षों को काटता जा रहा है, काटता जा रहा है। हम तो देखते हैं हमारे भारत वर्ष में बहुत कम ऐसे पर्वत बचे हैं जिन पर कुछ वृक्ष अभी हैं। तो सारे पर्वत सन्यासी के कपार की तरह काट करके चिकने कर दिए, कहीं कोई वृक्ष नहीं दिखाई पड़ रहा। वह त्रिकूट पर्वत अनेक प्रकार के जंगली पशुओं से भरा पड़ा है, उसकी द्रोणियां भरी पड़ी हैं, और चित्र द्रुम सूर्योदय कलकंठ विहंगम, और विचित्र द्रुम है वहाँ चित्रा द्रुमा जेसु तेसु सूर्योद्यानेशु कलकंठा मधुर सोना विहंगमा जश्न। इस पर्वत पर वक्र तत्र देवताओं के उद्यान है, सूर्योद्यान का देवताओं के द्वारा सुरक्षित और संवर्धित बहुत से उद्यान है अपने अपने। सबसे बड़ा उद्यान वरुण जी का है जिसका नाम है ऋतुमत, ऋतुमान, आगे वर्णन आएगा। लेकिन भगवान इंद्र का भी उद्यान है, चंद्र का उद्यान है, सूर्य का उद्यान है, सभी देवताओं के उद्यान है अलग अलग उस पर्वत पर। और उन उद्यानों में चित्र द्रुमा विचित्र प्रकार के वृक्ष हैं, जो वृक्ष वास्तव में केवल स्वर्ग में पाए जाते हैं। इस पृथ्वी पर ऐसे वृक्ष सुलभ नहीं है। अब तो इस पृथ्वी पर यही बच गया बेस्वर्ण और कंटीला बबुल बच गया, यही कल्प वृक्ष बह गया है। हमें देखते पूरा राजस्थान गुजरात उन कटीले वृक्षों से भर गया। एक व्यक्ति कहता है कि अब तो भगवान जब अवतार लेंगे तब इसको काट सकते हैं, मनुष्य की शक्ति से बाहर हो गया। इतना फैलता जा रहा। पशुओं के लिए कोई काम में नहीं आता है, मनुष्यों के लिए कोई काम में नहीं, केवल जलावन के काम में आप। और आज के युग में सरकार फल के वृक्षों को नहीं लगाती है, इसी कल्प वृक्ष का सेवन कर रही, इसी को बचा करके रखो। तो हम लोग यहाँ के हीन वृक्षों को लताओं को देख करके तब उसको समझेंगे। इसलिए मैं यहाँ के रियाद कर रहा हूँ, यहाँ की याद नहीं करनी चाहिए। क्या करें, हम लोग यही रहते हैं इसलिए याद आती है वो बात सुन करके। तो सूर्योद्यान चित्र ध्रुव सूर्योद्यान, वहाँ देवताओं के उद्यान है, बाग हैं जिनमें विचित्र विचित्र प्रकार के वृक्ष हैं, और इसके साथ ही साथ इन उद्यानों में कलकंठ विहंगम है, बहुत से विहंगम भरे पड़े हैं, पक्षी हैं जिनके कंठ बड़े ही काल है, मधुर मधुर कंठ, बहुत सुंदर बोली बोलने वाले पक्षी भरे रहते हैं। नानारण पशु व्रत संकुल द्रंगनम कृत चित्र द्रुम सूर्योद्यान कलकंठ विहंगम सरित सरोमणिबालिक देवस्त्री मज्जना मोद सौरभांगल्युत किंच स्वच्छोदक सरित सरोत। वह पर्वत कैसा है फिर आगे बताते हैं कि अक्षोभ दल भी जिनके जल बहुत अच्छे हैं, अच्छे अच्छे शब्द संस्कृत है, उसमें सु शब्द लगाया जाता है, उसे स्वच्छ कहते हैं, सु अच्छ स्वच्छ अच्छा या अच्छ, ये संस्कृत शब्द है। उस पर्वत पर जितनी भी नदियां हैं और सरोवर हैं उनके जल बहुत ही सुंदर अच्छ उदक। जल की अच्छाई क्या है, उसमें कोई आगंतुक वस्तु न मिली हो, मिट्टी न मिला हो, खर पात न मिला हो, और इसके साथ ही साथ सुगंधित जल हो, बिल्कुल फ्रेश हो और बहुत गर्म ना हो और बहुत अधिक ठंडा ना हो, ये जल का गुण है। तो अच्छ उदक, उस पर्वत पर बहुत सी नदियां हैं, बहुत से सरोवर हैं जिनका जल बहुत ही सुंदर है। तो ऐसे सुंदर जल वाले सरोवरों से और नदियों से वह युक्त है पर्वत, पुण्य मणि बालुका है। और उस पर्वत पर जो सरोवर हैं या नदियां हैं और नदियों के जो पुण्य हैं, तट हैं, मणि बालुका, उनकी बालुका, उनका रेता ऐसा है, लगता है कि मणि ही चूर्ण करके पसार दी गई। यहाँ के रेत जैसा नहीं है, मणि बालुका। जब उस पर्वत पर मणियां ही हैं, सोना है, चांदी है, मरकत मणि आदि है, तो बालू भी बनेगा, बालू का रेता बनेगा तो उनके ही टुकड़े से बनेगा ना, तो इसलिए मणि बालुका। हम लोग इधर पर्वत में देखते हैं पत्थर भरा पड़ा है, इसलिए रेता जो होता है पत्थर का टुकड़ा होता है, छोटा 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 इकट्ठा हो जाता, लेकिन उस पर्वत पर तो केवल मणिया है, इसलिए बालुका जो है, रेता जो है, वो मणियों का बना हुआ है, बिल्कुल फ्रेश मणि बालुका, पुलिने मणि बालुका। नदियों और सरोवरों के तट मणिमय बालुका से परिपूर्ण है और किस तरह से पर्वत। देवस्त्री मज्जना अनोद सौरधाम वलिनर्जित। और अब वर्णन करते हैं उस पर्वत पर जो नदियां हैं और सरोवर हैं, उनके जलों में देवताओं की स्त्रियां स्नान करती हैं। देवस्त्री मज्जना मोदा, और देवताओं की स्त्रियां जब उस जल में स्नान करती हैं, तो उनके शरीर में लगा हुआ केसर धुल जाता है जल में, इसलिए जल सुगंधित हो जाता है, बहुत सुंदर लगता है। एक तो रंग भी थोड़ा बदल जाता है और बहुत सुगंधित हो जाता है जल। सौरभ देवश्री मज्जना मोद, देवश्री नाम मज्जनेन यह आमोदस तेन सौरभ युक्तानि अंबूनि अनिलाश्च तैश्च जुता इति। श्री सुखदेव गोस्वामी त्रिकुट पर्वत की नदियों का और सरोवरों का वर्णन कर रहे हैं। पर्वत की शोभा तो वास्तव में नदियों और सरोवरों से होती है। उन नदियों में और सरोवरों में देवताओं की स्त्रियां स्नान करती हैं। देव स्त्री मज्जन, स्नान करना ये देवताओं का स्वभाव है। जो लोग स्नान नहीं करते हैं वे लोग भूत प्रेत माने गए हैं। स्नान करना चाहिए। त्रिकुट पर्वत की नदियों और सरोवरों में देवताओं की स्त्रियां स्नान करती हैं। और ऐसे देव लोग की स्त्रियों के क्योंकि स्त्रियों के शरीर में स्वाभाविक आमोद रहता है, आमोद का अर्थ सुगंध, स्वाभाविक सुगंध है देवताओं में। मनुष्यों जैसा देवताओं के शरीर में दुर्गंध नहीं होती, सुगंध होता है। और ऊपर से देवता लोग अपने शरीर में बहुत ही सुंदर सुंदर पेस्ट लगाते हैं, अंगराग लगाते हैं, जैसे चंदन, केसर इत्यादि। और गुरु वे लोग ऐसे ही परम सुंदर हैं और उनका शरीर सुगंधित है, उस पर भी ऊपर से बहुत बहुत सुंदर सुंदर अंगराग धारण करते हैं, स्वर्गीय अंगराग। और विशेष करके देवताओं की स्त्रियां, तो ये स्त्रियां जब नदियों में या सरोवरों में स्नान करती हैं तो उनके शरीर का आमोद सुगंध अंगराग फैल जाता है। और उसके कारण जल तो सुगंधित होता ही है, सौरभ युक्त होता है, यहाँ तक कि अनिला हवाएं सुगंधित हो जाती है, जल सुगंधित और वायु सुगंधित चारों तरफ। तो इस पर्वत पर चारों तरफ सुगंध ही सुगंध है। एक तो पर्वत में उगे हुए वृक्षों के पुष्प की सुगंध और दूसरे देवताओं की स्त्रियों के अंगराग की सुगंध, सुगंधित हवा, सुगंधित जल, और इस प्रकार से वह पर्वत युक्त है। यहाँ जलवायु का वर्णन किया गया, जल और वायु, कितना सुंदर पर्वत है। कभी क्या किसी के मन में इच्छा होगी कि हम भी कभी उस विजिट करते, उस पर्वत को देखते। यह सब भगवान की बनाई हुई सृष्टि, और उस स्थान को जिसको भगवान ने अपने लीला भूमि के रूप में स्वीकार किया, इसलिए वो धन्य है। तो अब आप सोच सकते हैं कि ब्रज भूमि कितने धन्य है, जहाँ भगवान नित्य विहार करते। त्रिकुट पर्वत पर गजेंद्र को बचाने के लिए आए थे, इसलिए वो पर्वत इतना धन्य हो गया। और भी कारण है, वहाँ भगवान का जश गाया जाता है, देवता रहते। चूंकि श्री भगवान ने त्रिमुख से ही कहा है कि इस पर्वत का जो स्मरण करता है, वृक्षों का, नदियों का, सरोवरों का, उसे मैं अपने धाम देता हूँ, विमल मति देता हूँ, उसी बात का स्मरण करके श्री सुखदेव गोस्वामी विस्तार से सबका क्रमशः स्मरण कर रहे हैं। तस्य द्रोण्याम भगवतो वरुणस्य महात्मनः उद्यानम ऋतुमन्नाम आक्रीडम सूर्योषिताम। तस्य द्रोण्याम, उस विशाल त्रिकुट पर्वत की द्रोणी में भगवान वरुण देव का एक उद्यान है जिसका नाम है ऋतुमान। उसका ऋतुमान नाम इसमें कहा गया है, ऋतु का अर्थ है पुष्प और फल आदि की समृद्धि का हेतु काल, उसको ऋतु कहते हैं। तो उस उद्यान में 12 महीने और 24 घंटे सब प्रकार के फूल और फल भरे रहते हैं, इसलिए उसका नाम है ऋतुमान। भिन्न भिन्न ऋतुओं में खिलने वाले पुष्प सदा उसमें खिले रहते हैं। वो ध्यान नहीं रखते हैं ऋतु का और कुऋतु का, इसलिए उसका नाम है ऋतुमान। सबसे बड़ा और सुंदर उद्यान है भगवत वरुणस्य महात्मनः। वरुणस्य, वरुण जी के यहाँ दो विशेषण बताए गए हैं, भगवत और महात्मन। भगवत का अर्थ परम धनी, परम ऐश्वर्यवान। वरुण देव बहुत धनी देवता है, इनका कोष सबसे बड़ा है, वरुण देव का बैंक बैलेंस सबसे अधिक है, इसीलिए इनको यहाँ भगवान कहा गया, परम ऐश्वर्यवान। और दूसरे महात्मा, भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त, सुमहात्मा। तो ये ऋतुमान नामक उद्यान बनाए। उस उद्यान की विशेषता बता रहे हैं कि वहां पर देवताओं की स्त्रियां विहार करती, आक्रीडन सूर्योषिता। इससे यह सिद्ध हुआ कि वहां पर सामान्य जीवों का प्रवेश नहीं, उस उद्यान में देवताओं की स्त्रियां ही वहां घूम सकती हैं, विहार कर सकती हैं। और उसे ऋतुमान नामक उद्यान में बहुत सी नदियां हैं, सरोवर हैं, जिनमें देवताओं की स्त्रियां विहार करती हैं। आक्रीड़म सूर्योषित, आक्रीड़ का अर्थ होता है क्रीड़ा स्थान, जहां देवता भी सुख भोगते हैं, देवताओं को भी जहां आनंद का अनुभव होता है, वह स्थान अति महिमामय है। और आक्रीणम से तात्पर्य है देवताओं की स्त्रियां वहां के वृक्षों से पुष्प चयन करती हैं, श्रृंगार करती हैं, सरोवरों में नहाती हैं, और भी नाना प्रकार के खेल कूद जो है वो करती है। यह आशय है आक्रीणम सूर्योषित। तस्य द्रोण्याम वरुणस्य उद्यानम आस्ते। स सर्वतोलंकृतम विद्य नित्यम पुष्प फलद्रुमही। तो आधे श्लोक में उस ऋतुमान नामक उद्यान का वर्णन किया जा रहा है। सर्वतोलंकृतम विद्य नित्यम पुष्प फलद्रुमही, वह ऋतुमान नामक उद्यान सब तरह से अलंकृत है, दिव्य पुष्प फल द्रुमों से अलंकृत, ऐसे वृक्षों से वह अलंकृत है जिसमें नित्य पुष्प और फल लगे रहते हैं। नित्यम पुष्प फल द्रुमई, उसे त्रिकूट पर्वत के ऋतुमान उद्यान में ऐसे वृक्ष लगे हैं जिनमें नित्य ही फूल लगे रहते हैं और फल लगे रहते हैं। यह नित्य का तात्पर्य दिया है कि प्रतिदिन फ्रेश लग जाते हैं, ऐसा मत समझिए कि पुराने फल लगे हुए हैं कोई खाने वाला नहीं है और गिरते होंगे सड़ जाते होंगे, ऐसा नहीं। वृक्षों का ऐसा स्वभाव है कि नित्य ही फल लगे रहते हैं, लगते रहते आते रहते हैं, नए नए फूल आते रहते हैं। और वे सब वृक्ष दिव्य ही स्वर्गीय पुष्प है। सुखदेव गोस्वामी इस पृथ्वी पर कथा कह रहे थे, वे स्मरण कर रहे हैं कि वे यहाँ के वृक्ष नहीं है, वे दिव्य वृक्ष हैं स्वर्ग के। तो उद्यान वह ऋतुमान नामक उद्यान इस प्रकार के वृक्षों से सब वर्ष अलंकृत है, भरा हुआ है। यहाँ तक उद्यान का वर्णन किया गया, पुनः पर्वत का वर्णन करते हैं। देखिए श्रीपद श्रीधर स्वामी जी अर्थ करते हैं, गिरी बना दी सर्वम ध्येयम इति बक्ष्यति अतो गिरिम उपवर्णय वनम वर्णयति सर्वतोलं कृतम इति। पुनः गिरिम वर्णयति मंदारे इति चतुर्दी। गिरी वन आदि सर्वम ध्येयम, गिरी पर्वत और वन आदि का ध्यान करना चाहिए इति बक्ष्यति, आगे भगवान इसको कहेंगे। अतः गिरिम उपवर्णय वनम वर्णयति, पर्वत का वर्णन करके वन का वर्णन करते हैं। सर्वतोलं कृतम इति और पुनः गिरिम वर्णयति मंदारे ऋतु चतुर्दी, और फिर से पर्वत का वर्णन कर रहे हैं। क्या भेद है वर्णन में, आप सूक्ष्म भेद समझिए। उद्यानम शब्द दिया गया उधर, इसलिए ये जो वर्णन आया है सर्वतोलं कृतम अलंकृतम, लेकिन जब पर्वत का वर्णन आएगा तो वृत शब्द आएगा, वृत न तो वृतम, तो ये यहाँ भेद लक्षित हो रहा है। अब पुनः पर्वत का वर्णन चार श्लोकों में कर मंदार ही पारिजात पाटला शोक चंपक ही चूत प्रियालय पनसय राम रय राम रात कैरपी। ये विभिन्न प्रकार के वृक्षों के नाम है, कुछ की तो हमको धारणा है कुछ की नहीं है, लेकिन नाम जो आए हैं मैं गिना दूंगा। उस पर्वत पर कौन कौन वृक्ष हैं? मंदार, यह मंदार पारिजात की तरह स्वर्गीय वृक्ष है और सब बहुवचन में दिए गए हैं, खचाखच भरे पड़े हैं सब जगह। तो मंदार कल्प वृक्षों से वह पर्वत युक्त है। मंदार ही पारिजात, मंदार पारिजात और पाटल अशोक और चंपक, ये जो गिनाए जा रहे हैं एक लाइन में, ये सब पुष्प के वृक्ष हैं। मंदार पारिजात पाटल अशोक और चंपक। पाटल एक गुलाब की तरह फूल फूलता है, उस वृक्ष का नाम, लेकिन ये पृथ्वी का गुलाब कंटीला नहीं, वो दूसरा फूल होता है। अशोक और चंपा सब बहुवचन में दिए गए, इसलिए समझना चाहिए कि बहुत बाहुल्य है उस पर्वत पर उन पुष्प वृक्षों की। सूत प्रियालय पनस रामलय रामरात कैरपी क्रमकर नालिके रहस्य खरजूर बीज पूर कही। अब फल वाले वृक्षों का वर्णन कर रहे हैं। चूत प्रियाल चूत, चूत का अर्थ है आम, आम की एक जाति है। विविध प्रकार के आम पाए जाते हैं उस पर्वत पर, और स्वर्ग में तो ऐसे ऐसे आम फलते हैं, वर्णन किया गया है कि पर्वत के शिखर के साइज के आम लगते हैं वृक्षों में। और एक जम्बू नदी बहती है जम्बू रस की, तो जामुन का वृक्ष है जिसमें हाथी के बराबर, हाथी के साइज के बराबर फल लगते हैं और गिरते रहते हैं और फूटते हैं और उनके रस की नदी बह जाती है जिसे जम्बू नदी का। और उसके दोनों तट पर जब रस मृतिका से मिलता है और सूर्य की किरणें और वायु का स्पर्श होता है तो जाम्बू नद नाम का सोना बन जाता है। वह सोना इस पृथ्वी पर सुलभ नहीं है, केवल देवताओं के भाग्य में, केवल सुनने भर के लिए है। यहाँ यहाँ का जो सोना है वो बिल्कुल घटिया किस्म का सोना है, किसी काम का नहीं है। देवता लोग तो इस पर फूकने में भी हिचकिचाएंगे ऐसा, और उसी को लोग बड़े आराम से धारण करते हैं। देवता लोग जाम्बू नद नाम का सोना पहनते हैं। तो इसी तरह से एक आम का वृक्ष है जिसमें पर्वत के शिखर जैसे बड़े बड़े आम, अनार जिसमें बीज भरा रहता है उसको बीज पूरक कहते हैं, अनार, मधुकई, महुआ, साल, तालिस, साल और ताल, पता नहीं साल कौन सा फल का वृक्ष, और ताली, ताल वृक्ष। तो कोई कोई ऐसे भी वृक्ष हैं जो फल नहीं देते हैं, केवल लकड़ी के काम में आते हैं। शाल तालेश, तमालय, रसनार्जुन, तमाल, असन, अर्जुन, अरिष्ट, उदुम्बर, उदुम्बर का अर्थ है गुलर, उदुम्बर, प्लक्ष, ताकड़, बटई, बरगद, किंसुक चंदन, पलाश और चंदन, पिचुमंदई, पिचुमंदई एक नीम जिसको कहता हूँ, नीम वृक्ष इस संसार में उसी प्रकार का एक वृक्ष होता है। पिचुमंद, कोबिदार, सरल, सुरदार भी, और अनेक प्रकार की लकड़ियां, अनेक प्रकार के वृक्ष हैं जो सुरदार भी या देवदार भी, देवताओं का वृक्ष, देवदार, द्राक्षा। अब औषधियों के जो वृक्ष हैं उनके विषय में द्राक्षा, अंगूर, सब स्वर्गीय लगे हुए हैं वृक्ष। द्राक्षा, इक्षु, गन्ना, रंभा, केला, जम्बू, जामुन, बदरक्षा भरामला, बेर के फल वहाँ हैं, और अभया हरितकी, और अमृत आंवला, आंवला का नाम है अमृत, और हरितकी को, हरे को अभया कहते हैं। तो अभय और अमृत का सेवन करना चाहिए, हमेशा आंवला खाना चाहिए और हरे खाना चाहिए। एक वैद्य हम कहा करते थे कि जैसे बच्चा यदि अपनी माँ के गोद में रहेगा तो उसका मंगल ही मंगल होगा, तो उसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति अपने पेट में हरे डालता रहे तो उसके पेट का मंगल ही मंगल होगा। इसको अभया कहा गया है संस्कृत में, यह अभय करती है, सब प्रकार के रोगों से मुक्त कर देती है। भगवान ने स्वाद बड़ा विकट बनाया है, लोग खाते नहीं है हरे हरिपिकी, आंवला भी नहीं खाते, पर मूर्ख लोग नहीं खाते हैं। ये भगवान ने स्वाद तो बनाया है तीखा, लेकिन बहुत फायदा करता है आंवला और हरे, सेवन करना चाहिए। स्वर्ग में भी भगवान अपने धाम में भी ये सब चीज बनाए, यदि वहां वो रोग सुख नहीं होता है लेकिन फिर भी ये सब वस्तुएं वहां हैं, हरे और आंवला इत्यादि। बिल्वई कपित है जंबीर है वृतो भल्लाद काज भी, बिल्वई बिल्व फल, यह भी पेट के लिए बहुत फायदा करता है। बिल्व और कपित और जंबीर और भल्लातक आदि, इन सब वृक्षों से वह वृत घिरा हुआ है पर्वत, और उस पर्वत में पर्वत पर एक बहुत बड़ा सरोवर है, उसका वर्णन कर रहे हैं। तस्मिन् सरह सुविपुलम लसत कांचन पंकजम,
तस्मिन गिरल उस पर्वत पर सुविपुलम सरा एक बहुत बड़ा सरोवर है। यदि उसको एक दूसरा समुद्र कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस सरोवर में वो ग्राह रहता था, गजेंद्र को पकड़ा था, उस सरोवर का वर्णन प्रारंभ किया जा रहा है। तो उसके चतुर्दिक साइट का वर्णन सुखदेव गोस्वामी पहले किए। उस पर्वत पर एक सरोवर है, उसके साइट का वर्णन तो नाप करके नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कहते हैं सुविपुलम। सुविपुलम विपुलम पुल का अर्थ होता है सेतु, बांध बनाना। संस्कृत में पुल का अर्थ होता है सेतु, और विपुल का अर्थ होता है जिस पर सेतु नहीं बनाया जा सकता, बहुत बड़ा। इसका अर्थ ये हुआ विपुल, और उसमें भी सुविपुल अतिशय बड़ा, दोनों तरफ से बहुत गहरा, बहुत गहरा और बहुत विस्तृत एक सरोवर था, लेक का झील था। और लसत कांचन पंकजम, साढ़े पंचमी, साढ़े पांच श्लोकों में उस सरोवर का वर्णन किया जा रहा है जिस सरोवर ने गजेंद्र जी को ग्राह ने पकड़ा था। लसंती कांचन पंकजानी जस्मिन, उस सरोवर की विशेषता पहले तो ये बताया कि वो सुविपुल है, बहुत लंबा चौड़ा, बहुत गहरा, और दूसरी विशेषता उसकी सुंदरता बता रहे हैं। लसंती कांचन पंकजानी जस्मिन, उस सरोवर में पीले वर्ण के सोने जैसे कमल खिले हुए थे, चारों तरफ भरा पड़ा, बहुत सुंदर लग रहे थे कमल, या उन कमलों के कारण वह सरोवर अब सुंदर लग रहा है। गहरा था, लेकिन उस गहरे सरोवर में से कमल खिले हुए, कांचन पंकजम, कंचन का अर्थ है सोना, स्वर्ण कमल खिले हुए, स्वर्ण कमल का अर्थ है सोना जैसा पीत वर्ण की दीप्ति जिनमें थी, ऐसे कमल खिले हुए, स्वर्ण कमल से भरा पाया। लसत कांचन पंकजम, कुमदोत्पल कहलारा सतपत्र श्री अर्जितम मत्त षटपद निर्घुष्टम शकुंत कलस्वन ही। और वर्णन कर रहे हैं सरोवर का कि कुमुद, उत्पल, कहलार और सतपत्र आदि के सौंदर्य से वह उर्जित था। कई प्रकार के कमल और भी खिले हुए थे। कुमुद, कुमुद का अर्थ है कोई कुमुदनी, ये प्राय इस पृथ्वी पर हम लोग देखते हैं, कुमुदनी शरद ऋतु में खेलती है, ये बिल्कुल उज्जवल वर्ण की होती है कुमुदनी। और उत्पल, उत्पल का अर्थ है श्वेत कमल, कहलार का अर्थ है रक्त कमल, और सतपत्र बहुत बड़ा बड़ा कमल, ये सब उसमें खिले हुए थे। और उनके श्रिया, कुमुदादि नाम श्रिया, उर्जितम सुशोभितम मत्त षटपद निर्घुष्टम, और उन कमलों पर, उस सरोवर में उन कमलों पर मतवाले अच्छे आनंद में भौरे भनभन भनभन कर रहे थे, गुंज रहे थे, भौरे गुंजार कर रहे थे। मत्त षटपद निर्घुष्टम शकुंत कलसोन, और इसके साथ ही साथ शकुंत कलसोन मधुर स्वर वाले पक्षियों के द्वारा उस सरोवर बड़ा गुंजरित रहता था, निर्घोष होता रहता था। वन की शोभा का वर्णन अलग से किए, वन में रहने वाले पक्षियों का अलग वर्णन किए, सरोवर में रहने वाले पक्षियों के विषय में कहते हैं कि उन जल पक्षियों से वह बड़ा सुंदर लगता था सरोवर, और कमल भरे पड़े थे। हंस तारंगवा किरणम चक्राह सार सैरपी जल कुकुट कोयस्ति दात्युः कुलकुजितम्। अब विशेष प्रकार के जल पक्षियों का वर्णन करते हैं। उस सरोवर में कौन कौन पक्षी रहते थे? हंस, कारंडव, इन सब से भरा पड़ा था। हंस कारंडवा किरणम, हंस से और कारंडव से भरा हुआ था। चक्राह सारसैरपि, और चकवा पक्षी से भरा हुआ था, सारसों से भरा हुआ था। जल कुकुट, जल मुर्गा से, कोई पक्षी है जिसे जल मुर्गा कहते हैं, जल कुकुट, कोयस्ति, और दात्यु, दात्यु का अर्थ चाक तक इत्यादि, नहीं दात्यु, तितिर को दात्यूह नहीं कहते हैं, कोई दात्यूह शब्द है किसी पक्षी के लिए। इन सब के द्वारा वह कूजतम सरोवर बड़ा शब्दायमान रहता। अच्छा, एक अब विशेष वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। उस सरोवर में चारों तरफ कमल खिले रहते हैं और नीचे मत्स्य मछलियां और कच्छप कछुए चलते रहते हैं। ये चलते हैं तो उनके संचार से कमल हिलता है, कमल हिलते हैं और कमलों के हिलने से उन कमलों का पीला पराग जल में गिर जाता है। तो सारा जल बहुत सुगंधित लगता है, कमल का पराग गिरा रहता है। मत्स्य कच्छप संचार चलत पद्म रज पय, नाम कच्छता नाम च संचारेण चलताम पद्मा नाम रजसा जुक्तम पयो जस्मिन तप। उस सरोवर का जल कैसा है, मत्स्या नाम कच्छता नाम च संचारेण, मत्स्य चलते हैं और कछुए चलते हैं तो उनके चलने से चलताम पद्मा नाम कमल हिलते हैं, कमल के हिलने से कमल का रज गिर जाता है जल में। सब जगह बहुत से मत्स्य है और बहुत से कच्छप है, इसलिए ये लोग बराबर चलते ही रहते हैं और उनके चलने से पद्म हिलते हैं और हिलने से उनका पराग उनका रज जल में गिर जाता है। तो वह जल कमल के पराग से युक्त है। कितना सुंदर वर्णन है, कहीं कोई गंदगी का नामो निशान नहीं, केवल स्वच्छता स्वच्छता दिव्यता। ध्यान रखिए कि उन सरोवरों में, ऐसे सरोवरों में जो मत्स्य और कछुए रहते हैं उनको मारने वाले कोई भी लोग वहां नहीं रहते हैं। इधर के तो नदियों से और सरोवरों से लोग मछलियों को निकाल कर खा जाते हैं और कमल का कोई पता ही नहीं, एक भी कमल में सब कचड़ा बहता रहता है। और ऐसे लोग जब देवताओं पर विचार करते हैं तो कहते हैं देवता है ही नहीं, सब ऊपर का लोग सुनसान है, केवल हम ही लोग हैं इस सृष्टि में, ऐसे वर्णन करते हैं। लेकिन श्रील सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं त्रिकुट पर्वत का, उसकी शोभा का, उसके सौंदर्य का, साइट का। यह एक बहुत ही सुंदर वर्णन है किस प्रकार से त्रिकुट पर्वत का वह विशाल सरोवर कमलों से भरा हुआ है और कमल के पराग कैसे गिरते हैं। ऐसे जोर की जब हवा चलती है उस समय भी कमल के पराग झड़ जाते हैं पानी में, परंतु बिना हवा के भी शांत समय में भी कच्छप और मत्स्यों के संचरण से वो पराग गिरता रहता है कमलों के हिलने से। यह है भगवान की व्यवस्था। अपने आप यह संसार कैसे सुंदर रह सकता है, भगवान ने सब कुछ व्यवस्था किया। पानी को अलग से सुगंधित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अपने आप कमल के पराग से सुगंधित होता है। बहुत सुंदर है दृश्य का वर्णन। मत्स्य कच्छप संचार चलत पद्म रज पय, कदम लदे तसनल नीप बंजल कैर वृतम। और इसके साथ ही साथ वह सरोवर अपने सुंदर तट से युक्त है, उसके तट पर कौन कौन वृक्ष हैं, कदम्ब बेतस नल नीप और बंजुलक, ये सब विभिन्न प्रकार के वृक्ष हैं जो किसी सरोवर के तट पर ही उगते हैं। तो इस प्रकार के वृक्षों से वह सुशोभित है। कुंदई कुर्ब का अशोक है श्री सह कुटजंगदही, कुब्ज कह स्वर्ण की उत्थी भेर नागपुर नाग जात भी, मल्लिका सुत पत्र माधवी जाल काद भी, शोभितम तीर जैसा ने नृत्य कर नित्य ऋतु भी अलम द्रमही। तो वह सरोवर ऐसा सुशोभित है, उसके चारों तरफ है वृक्ष हैं लताएं हैं। उन्हें कुछ का नाम बता रहे, कुंदय कुर्बक अशोक शिरीष कुटज इंगुद कुब्जक स्वर्णजूथी
नाग पुन्नाग ये सब पुष्प है। मल्लिका सत्पत्रश्च माधवी जाल का भी, जब श्री गोपीजन भगवान को खोज रहे थे तो जमुना के तट पर सब वृक्ष थे और लताएं थी, ऐसा वर्णन भागवत में आया है, तो उनका नाम यहाँ पर गिनाया जा रहा है। उस सरोवर के तट पर ये पुष्प के वृक्ष हैं और फल के वृक्ष हैं। शोभितम तीरजय का अर्थ है उस सरोवर के तीर पर जो जन्म लिए हैं ऐसे वृक्षों से वह सुशोभित। नित्य ऋतु भी अलम द्रुमयी, नित्यम ऋतव फल पुष्पादि संपत्ति हेतव जे शांत अलम शोभित। ऐसे ऐसे वहाँ पर वृक्ष हैं लताएं हैं जिनमें नित्य ही फल और पुष्प लगे रहते हैं, और ऐसे वृक्षों से लताओं से वह सरोवर अतिशय सुशोभित है, खूब सुंदर लगता है। इस प्रकार पर्वत वन सरोवर आदि का वर्णन करके श्रील सुखदेव गोस्वामी अब जो कथा है उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। तत्रै कदा तद गिरिकाननाश्रय करेणुभिर्वारण जुत्थपश्चरन् सकंटकान की चक वेत्र वेणुवत् विशाल गुल्मं प्रवृजन वनस्पतिं जद गंध मात्रा धर यो गजेन्द्रा व्याघ्रादयो व्याल मृगा शखड्गा महोरगाश्चापि भया ब्रवन्ति सगौर कृष्णा सर्वाश्च मर्यः। तत्र एवं सति एकदा तद्गिरी काननाश्रयो वारण युक्तपः करेणभिश्चरन् त्रिसार्वितेन स्वजूथेन धृतः सरोवराभ्यासं समीपं आगमत इति पंचमेन अन्वय। यहाँ से प्रारंभ करके पांचवें श्लोक के साथ इसका अन्वय हो रहा है, अर्थात पांच श्लोकों में जो वर्णन है वह एक प्रसंग एक धारा में वर्णन किया गया है। अब सुनिए गजेंद्र जी की कथा जो इस कथा का सार भाग है। तत्रै कदा तद्गिरिकाननाश्रय, एक बार की बात है, एकदा तद्गिरिकाननाश्रय उस पर्वत के कानन में जो आश्रय लिया था उस पर्वत के वन में निवास करने वाला एक गजेंद्र था। वारण जुत्थप, वारण का अर्थ है हाथी और जुत्थप का अर्थ है जुथ का नेता पालन करने वाला। हाथी का स्वभाव है वह झुंड में रहता है जुथ में रहता है, और सिंह का स्वभाव है वह अकेला रहता है। भिन्न भिन्न प्रकार का स्वभाव होता है पशुओं का, मनुष्यों में भी कुछ लोग अकेले रहना चाहते हैं, कुछ लोग झुंड में रहना चाहते हैं जुथ में रहना चाहते हैं। तो हाथियों का स्वभाव है जुथ में रहते हैं, और उस जुथ का कोई न कोई पालक होता है उसको जुथक कहते हैं यूथक। तो एक बहुत बड़ा शक्तिशाली गज था, हाथी था, जो समस्त हाथियों का सरदार था। गज जुत्थप वारण जुत्थप, तो उस पर्वत में और उस पर्वत के वन में वो आश्रय लिया था, वहीं रहता था। तद्गिरि काननाश्रय, एक बार की बात है, वह हथिनियों के साथ वन में विहार कर रहा था। ये हाथी का स्वभाव है, वो बहुत सी स्त्रियों को लेकर के घूमता रहता है, बहुत सी हथिनियां रहती हैं और बारी बारी से सबके कंधे पर देह पर अपनी सूंड को रखता है और रक्षा करता है सबकी और चलता है और उनके साथ भ्रमण करता है। तो करेणु भी, करेणु का अर्थ हथिनियों के साथ वारण जुथ पश्चरण वो घूम रहा था, विचरण कर रहा था। और सकंट कान की चकबेणु देव विशाल गुलमन प्ररुजन वनस्पति, उस समय वह देत कीचक और बेणु आदि के गुल्म को झुरमुट को प्ररुजन, स्वरुजन का अर्थ राउंडता हुआ घूम रहा था। हाथियों का झुंड चल रहा था, जिधर बांस पड़ गए कीचक या बेंत तो सब तहस महस कर देता था, घूम रहा था। प्ररुजन का अर्थ है प्रभंजन, तोड़ता हुआ राउंडता हुआ घूम रहा था। कथम भूत, कैसा हाथी था। अब सामान्य रूप से उसके स्वभाव का प्रभाव का वर्णन कर रहे हैं। कथम भूत जद गंध मात्रा धर यो गजेन्द्रा व्याघ्रा दयो व्याल मृगा सखडगा। जद गंध मात्रा धर सिंघा गजेन्द्रा दय च भया द्रवंति पलायन्ते। इतना महान बलशाली वह गज था कि उसके गंध को पाते ही सिंह पलायन कर जाते थे, भाग जाते थे। जबकि सिंह के डर से हाथी भागते हैं, सिंह कभी नहीं भागता है, परंतु यह गजेंद्र इतना शक्तिशाली था इसका गंध पाकर के लोग भाग जाते थे। गंध का अर्थ है उद्देश्य, गंध का अर्थ शरीर से निकलने वाला गंध नहीं है। गंध का अर्थ है कि सिंह को पता लग जाता था कि वो इधर है निकट में, तो सिंह सब भाग जाते थे भय के मारे। ये उस गजराज के प्रभाव का वर्णन किया गया है। ऐसा हाथी आज तक नहीं हुआ, इतना बलवान था वो, बहुत बड़ा बलवान। तो जदगंध मात्रा हरयो, सिंह भाग जाते थे, गजेंद्रा और बड़े बड़े हाथी जो दूसरे जूथ के पालक थे वे भाग जाते थे भय से। गजेंद्रा व्याघ्रा दयो, और व्याघ्र आदि पशु भी भाग जाते थे, बाघ सिंह सब भाग जाते थे। ब्याल मृगा और बड़े बड़े सर्प अजगर आदि जो हाथियों को निगल जाते हैं वे लोग भी इसका पता पाते ही भाग जाते थे। मृगा और भी पशु सखडगा खड गैंडे आदि भाग जाते थे। महोरगा बड़े बड़े सर्प और गौर कृष्ण एक बहुत ही शक्तिशाली जानवर होता है, सर्प चमरी आदि ये सब भाग जाते थे इसके भय से। कहने का आशय यह है कि यह गजेंद्र बहुत शक्तिशाली थे और बहुत ओजस्वी बहुत तेज था। उस वन का एक प्रकार से यही राजा था, उस पर्वत पर सबसे शक्तिशाली जानवर यही। और जो अल्प शक्ति वाले छोटे छोटे जीव थे सब निर्भय घूमते थे, उनको इससे भय नहीं लगता क्योंकि गजेंद्र कभी भी छोटे जीवों को नहीं मारते। कौन कौन आनंद से घूमते थे, ब्रिका बराहा महिषर्क्ष शल्या गोपुच्छ साला ब्रिक मर्कटाश्च अन्यत्र क्षुद्रा हरिणा शशादयः चरंत भीता जदनो ग्रहेण। गजेंद्र के अनुग्रह से इनकी कृपा से और छोटे छोटे जीव निर्भय घूमते थे क्योंकि और सब तो भाग जाते थे बलवान और हिंसक जंतु, तो वे सब आनंद में रह रहे थे। एक प्रकार से सुखदेव गोस्वामी यह कह रहे हैं यह एक बहुत ही सुंदर राजा की तरह था जिसकी शरण में और जीव निर्भय थे। चरंती अभीता निर्भय होकर के विचरण कर रहे थे। कौन कौन, ब्रीक बरा सुअर भैंस और भालू शल गोपुच्छ साला ब्रिक मर्कटाश्च। गोपुच्छ साला और ब्रीक बानर हरिण और ससाद खरगोश आदि ये कभी नहीं डरते थे, केवल इतनी मर्यादा रखते थे कि अन्यत्र चलन थी गजेंद्र की दृष्टि को बचा करके घूमते थे, तो राजा के सामने नहीं आते थे। कहने का सही है, बस केवल गजेंद्र की दृष्टि नहीं पड़ती थी, वो जानते थे कि यहाँ पे खरगोश खेल रहा है, इधर सुअर है, इधर भैंस है, वो किसी को तंग नहीं करते थे, लोग निर्भय रहते थे। लेकिन अन्यत्र चरण थी, अन्यत्र से तात्पर्य श्रीता सिद्ध स्वामी जी कहते हैं कि तब दृष्टि पथम त्यक्त्वा चरण थी, बस दृष्टि पथ को छोड़ करके चरण करते। जैसे मान लीजिए गजेंद्र चल रहे हैं तो इनके सामने वे नहीं आते थे, छिप करके ऐसे रह जाते थे बस, लेकिन निर्भय घूमते। जैसे राजा है तो एक राजा से राजाओं को भय होता है, सामान्य व्यक्ति को नहीं, तो उसी तरह से गजेंद्र से बलवानों को भय रहता था और छोटे छोटे जीव बड़े सुख से विचरण करते। यह भी गजेंद्र के एक सुखद स्वभाव का वर्णन किया जा रहा है। वास्तव में एक भक्त थे पूर्व जन्म में। अतः इस वन में निवास करने पर जो छोटे छोटे जीव थे सभी सुखी थे। और तो क्या अन्य बलवान जीवों को दुख देते थे? नहीं, वे अपने आप इनका उद्देश्य पाते, इनके गंध मात्र से भाग जाते थे। इनका दोष क्या? ऐसा नहीं हो कभी युद्ध हुआ हो, कोई सामने आया हो, ऐसा ऐसी कभी संभावना नहीं रही। गंध मात्र से भाग जाते थे अर्थ। अथवा एक टीकाकार अर्थ किए हैं कि मान लीजिए गजेंद्र पूर्व दिशा में खड़े हैं और पूर्वैया हवा चल रही है और कोई जीव पश्चिम में है और गंध मिला, इनके गंध को लोग पहचान जाते थे। जो इनके गाल से मध छूटा था तो उसकी स्पेशल गंध होता था, तो उसको सूंघते ही सिंह आदि बहुत दूर भाग जाते थे, कहीं आ न जाए। ऐसे गजेंद्र किसी को कभी मारे नहीं, लेकिन इनका ऐसा प्रताप था कि वे हिंसक जीव से भाग जाए और छोटे छोटे जीव सुख से विचरण कर रहे थे। यह इनके स्वभाव का वर्णन है। इसलिए अनुग्रहेण, यहाँ अनुग्रह शब्द बता रहा है कि गजेंद्र मानो सबको अभय दान दिए थे, तुम लोग अन्य लोगों से मत डरो। जैसे हरिण, तो हरिण तो हमेशा बाघ से डरते हैं, सिंह से डरते हैं कि मार करके खा जाएगा, लेकिन जदनुग्रहेण जस्य गजेंद्रस्य अनुग्रहेण कृपया अभीता चरन्ति, निर्भय विचरण कर रहे। निर्भय का अर्थ केवल यह नहीं है कि गजेंद्र से नहीं डरते थे, और भी जीवों से अब उनको भय नहीं था, केवल गजेंद्र की उपस्थिति से। यह है भक्त का स्वभाव, उनके वहां रहने से और जीव सुखी थे। अब सुनिए उनकी वह उस दिन की कथा को जिस दिन इन्हें ग्राह पकड़ा। सघर्म तप्ता करी भी करेणु भी वृतो मदच्युत कल भैर अनुद्रुत गिरी गरिमड़ा परित प्रकंपयन निषेध्य मारो लिकुल मदाशन। पुनः की दृश्य फिर से वर्णन कर रहे हैं। गजराज कैसे थे? एक दिन की बात थी, सघर्म तप्त, एक दिन में घाम से तप्त हो गए। घर्म का अर्थ पसीना, इसको इसको भोजपुरी में हाउल कहते हैं, घर्म तप्त। और ऐसा कारण हुआ कि त्रिकूट पर्वत के जो शिखर बड़े बड़े थे और चट्टानें थी, तो कहीं से सूरज का प्रकाश टकरा करके और बहुत तेज आ रहा था। आप लोगों ने देखा है एक प्रकार का शीशा जो जिसमें सूरज की किरणें पुंजीभूत होकर के रुई को या कपड़ा को जलाने लगती, तो कुछ ऐसा स्थान था जहाँ पर सूरज की किरणें पुंजीभूत हो जाती थी एक जगह, और वहां से बहुत कड़ी आंच आ रही थी। पर वो हाथी बेचारा समझ नहीं रहा था कि ऐसा कैसे हो रहा, तो बहुत गर्मी हुई, पसीना छूटने लगा, तो तप्त लिखा गया, दुखी हो जाना, सघर्म तप्त, बहुत दुखित हो गया गजेंद्र। और इसके साथ ही साथ जितने भी उसके साथ हाथी थे, गजेंद्र थे अपने जूते के, ये सब घर्म तप्त हो गए, सब व्याकुल हो गए। एक तो गर्मी लग रही थी और दूसरे बहुत जोर की प्यास लगी, सबको प्यास से छटपटाने लगे। यह अकस्मात भगवान की ही लीला है कि सबको प्यास लग गई और सब घाम से व्याकुल हो गए। सघर्म तप्त करी भी करेणु भी करी भी, जितने भी हाथी थे वे भी सब घाम से व्याकुल हो गए और हथिनियां भी व्याकुल हो गई, और कल भाई जो छोटे छोटे बच्चे थे हाथियों के वे भी सब व्याकुल हो गए। गजेंद्र के अलावा और तीन प्रकार के लोग हैं वहां पर, हथिनियां और इनके ही समान बलवान वाले हाथी और छोटे छोटे बच्चे। हाथियों का समुदाय पूरा संग संग चलता है, छोटे छोटे बच्चे भी चलते, उनको कल्लभ कहते हैं, और हथिनियों को करेणु कहा जाता है, और हाथी को करी कहते हैं। करी का अर्थ कर वाला, कर का अर्थ हाथ, और हस्त का अर्थ भी हाथ होता है, हस्त से हस्ती बना, जिसको हस्त हो वो है हस्ती, हाथी। हाथी शब्द वास्तव में नहीं है, हस्ती को ही हिंदी में हाथी कहते, हाथी हाथ वाला वास्तविक शब्द है हस्ती, या करी कर वाला सुन वाला। तो जितने भी हाथी या हथिनिया या छोटे छोटे बच्चे थे सब घर्म तप्त हो गए और सबसे ये घिरा हुआ था और बहुत जल्दी जल्दी चलने लगा सरोवर की खोज में। गिरिन गरिमणा परित प्रकम्प निषेध मानो निकुल मदास में तो उस समय गजेंद्र जब चल रहे थे व्याकुल होकर के पानी की खोज में अपने झुंड के साथ तो अपनी गरिमा से अपने भारीपन से पर्वत को भी कपा रहे थे। गिरिम गरिमणा परित प्रकम्प पर्वत कांप रहा था मतलब पग जब रखते थे जल्दी जल्दी गजेंद्र तो पर्वत भी हिल जाता था। यह कितना भारी थे गजराज गजेंद्र कितना भारी थे इसका वर्णन किया जा रहा है। परित प्रकम्प चारों तरफ सुगंधित था स्वस्थ हाथी के गाल से सूता रहता इतना सुगंधित होता है और इतना स्वादिष्ट की भौरे पीछे पीछे लगे रहते हैं उस पर बैठते उसको पीते रहते तो मदासन ही अलुकले निषेध मारो गजेंद्र के गालों से मद चू रहा था और भौरे उनका सेवन कर रहे थे तो वो जा रहे थे तो भौरे भी जा रहे थे साथ साथ इस प्रकार सरोवर की खोज में चले। वे जानते थे कि यहाँ पर सरोवर है कुछ दूर पर उसमें वे पानी पीने के लिए चले सब प्यास से व्याकुल सरो नीलम पंकज रेणुरोषितम जिघ्रन दुदूरान मद देव लक्षण वृता सदूथे न तृषार्दुते न सरोवराध्यास मथागम द्रुतम रे उस प्रसिद्ध सरोवर की तरफ चले कैसे जिघ्रन दुदूरान दूर से ही सुंघ करके उस सरोवर की सुगंध आ रही थी जैसे पहले वर्णन किया गया कि कमल का पराग उसमें गिरा रहता था इस कारण से जल सुभाषित रहता उस सुभाषित जल को दूर से ही सूंघ करके और गजेंद्र चले जोर से सरोवर नीलम पंकजरेण रोषितम उस सरोवर की सुंदर हवा आ रही थी कैसी हवा पंकज रेण रोषितम पंकज के रेणु से कमल के पराग से सुवासित हवा आ रही थी सर अनिलम सरोवर का वायु आ रहा था इस तरह पंकज रेणु रोषित इसको जिघ्रन सुंघ रहा था। इसका अर्थ है कि गजराज अपने सूंघ को उठा कर से सूंघ रहे थे उस हवा को विदूरा बहुत दूर से मद भी वाले क्षण और मद से आंखें भी बिहल रहे थे अपने जूथ से घिरे हुए पर तुरसार भी तेलों से जूते सारा समाज ही प्यास से व्याकुल था। गजेंद्र तो प्यास से व्याकुल थे ही सारे बच्चे और पत्नियां तथा और भी अपने परिवार के जितने भी गजेंद्र थे सब प्यास से व्याकुल हो गए थे। तो बहुत जोर से तत् सरोवराध्यासम आगमन उस सरोवर के समीप वे आए चलते हुए ध्यान करने थे किस तरह से गजेंद्र जी चल रहे थे अपने समाज के साथ प्यास से व्याकुल होकर के उस सरोवर की तरफ जिस सरोवर का वर्णन अभी प्रस्तुत किया गया था वहां पहुंच करके तत्काल ही सरोवर में प्रवेश कर गए। यहाँ का स्वभाव होता है स्नान करना विगा तस्मिन अमृत अंग निर्मलम हेमार बिंद तल रेणुवासितम तपौ निकामं निजतस्पुष्करद्भुतं आत्मानमद्भीष्मतयं गतक्लमः विदाय जाते ही गजेंद्र जल में प्रवेश कर गए स्नान करने लगे कैसे जल में निर्मलम निर्मल अम्बु निर्मल जल में प्रवेश किए और कथम भूत जल है कैसा है हेमार बिंद पलवेण उदासितम स्वर्ण कमल के पराग द्वारा सुभाषित जल में प्रवेश किया। बारम्बार श्री सुखदेव गोस्वामी उस जल का वर्णन कर रहे हैं हेमार बिंद पलवेण उदासितम स्वर्ण कमल के पराग से वह सुभाषित जल वाला सरोवर तो उसने वे स्नान किए और तपो निकामम डूब करके और फिर सिंह से पानी पी रहे। दो बार पानी पीते हैं हाथी, इसीलिए उनको द्वीप कहते हैं। एक बार सिंह में खींचते हैं पानी को और पानी को खींच करके ऐसे मुख में डालते हैं, ऐसे पीते हैं। तो इसलिए संस्कृत में द्वीप कहा जाता है हाथी को। दो बार जो पिए वो है द्वीप। एक बार हाथ में ले करके तब मुख में डालते, जैसे हम लोग गिलास उठा करके ऐसे पीते हैं। हम लोग भी तो दो बार पीते हैं एक बार हाथ में ले करके और ऐसे पीते, लेकिन दो बार हम लोग नहीं पी पाते, इसलिए तो पानी गिलास नहीं रहता है या लोटा में रहता है। लेकिन हाथी अपने शरीर के भीतर वो पानी ले लेता है और इसके बाद उसको शिकर बना करके डालता है, देता छान करके देता। तो गजेंद्र इस तरह से पपव पिए निकाम जथेष, जितनी इच्छा थी जितना पानी अच्छा से पी सकते थे पिए, और पीने के बाद अपने सुंड से जल उठा उठा करके और सावर बना करके छोटी छोटी बूंदे बना करके और स्नान करने लगे। स्नान करता है हाथी, सर से फूही बनाता है, सीकर बनाता है इधर उधर। और यहाँ तक हमने देखा हाथी कई छोटे से सरोवर में स्नान करता है तो वहां से पानी लेकर के अपने पेट के नीचे भी डालता है, हाथ में डालता है, इधर उधर डालता है, ऐसे डाल। तो इस तरह से स्नान की निज पुष्करेण धुपसी करांबु भी, निज पुष्करेण, पुष्कर कहते हैं हाथी के सूंड के अग्रभाग को पुष्कर। तो अपने पुष्कर अपने कराग्र से जल उठाते थे और इसको शिखर बनाते थे। अपने आप हाथी उसको शिखर बना लेता है, शिखर का अर्थ बहुत सूक्ष्म बूंदे, और उस तरह से स्नान करा रहे थे, शीतल बना रहे थे। जो घर में तप्त शरीर था उसको शीतल बना रहे, अद्य भी जल से स्नपयन गता क्लम आत्मानं स्नपयन, अपने को स्नान कराए। एक बार पानी में डूब करके तो स्नान किए ही, और उसके बाद कुछ गाढ़ पानी में आकर के और इसके बाद अपने को स्नान कराए डाल डाल कर शीतल। और जब स्नान कर चुके पानी पी चुके तब अपनी पत्नियों को और बच्चों को स्नान कराना चालू किए, क्योंकि गृहस्थ थे और पालक थे उस युद्ध के। हथिनियां प्रवेश नहीं करती थी, वो सब तट पर खड़ी थी, क्योंकि बहुत बड़ा भय था, वो बहुत गहरा सरोवर था। वो तो केवल गजेंद्र थे जो निर्भय उसमें प्रवेश कर सकते थे, दूसरा नहीं प्रवेश कर सकते। ये तो गए विज्ञा ही है, उसने कुछ देर तक अवगाहन करके फिर निकले, स्नान किए पिए, लेकिन अब वो परिवार की सेवा में जुट गए। श्री सुखदेव गोस्वामी विशेष रूप से इसका वर्णन कर रहे हैं। स्नान जब किए पानी पिए तो गतक क्लम थकावट चली गई, घाम का जो दर्द था जो दुख था सब चला गया, इनका सुखी हो गए। और तब अपने परिवार को स्नान कराना पानी पिलाना चालू किए। ये बच्चे तो पानी भी नहीं पी सकते थे, डरते थे नक्र से, मगर से डरते थे। उनको पता था कि इसमें एक बहुत बलवान ग्रह रहता है, इसीलिए और लोग डर रहे थे उसमें जाने से। स्वपुष्करेण भित शिखराम्बुधि निपायम संस्नपयम जथा गृही घृणी करेणु कलभांश दुर्मद नाचस्त कृष्णम कृपण जमाया। वह गजेंद्र कृपण था, और सुखदेव गोस्वामी जी यहाँ से वर्णन कर रहे हैं इनका कृपण। कृपण का अर्थ है परिवार में आसक्त व्यक्ति, अपने बच्चों में अपने स्त्री में आसक्त व्यक्ति। और ये जानता है कि स्त्री और बच्चों से ही हमको परम सुख मिल सकता है, यही हमारे जीवन के परम पुरुषार्थ है। इस प्रकार की जिसकी धारणा है उसको कृपण लाचार कामी व्यक्ति कहते। तो गजेंद्र कृपण था, वो जानता था कि परिवार की सेवा करके परिवार में रहकर कहीं मैं सुखी हो सकता। और ऐसी स्थिति क्यों थी, क्योंकि अज माया भगवान विष्णु की ऐसी माया है, सभी जीव इस माया में डाले गए हैं, गजेंद्र ही नहीं, कितने कितने गजराज भरे पड़े हैं जो अपने पत्नी की और बच्चों की सेवा में लगे रहते हैं। और भगवान का एक माला जप नहीं करते, चाहे न घर घर में गजराज भरे पड़े, और काम में दक्ष हैं, लेकिन कहिए कि एक माला जप कीजिए तो बस उनकी नानी मर जाती है, अब वो जप नहीं कर पाते। बहुत सरल है, सुगम है, लेकिन नहीं हो पाता। और परिवार के लिए काम करना हो तो रात दिन एक कर देते हैं काम करना। आज माया, अजन्मा भगवान की ऐसी माया है, क्या कहेगा। स्नेह के बंधन में भगवान सबको बांध दिया है, और परिवार के पालन में व्यक्ति यह भी नहीं देख पाता है कि उसका जीवन व्यर्थ चला जा रहा है। एक दिन परिवार छूट जाएगा, फिर दूसरी जगह दूसरे स्थान पर जन्म होगा, इस बात को कृपण व्यक्ति नहीं समझ पाता। परिवार के साथ रहना चाहिए, परिवार की मदद भी करनी चाहिए, लेकिन व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि परिवार के साथ हमारा संबंध क्षणिक है, अनित्य है, कोई नित्य संबंध नहीं। पहले मैं इस परिवार में नहीं था और कुछ वर्ष के बाद चला जाऊंगा, परिवार ऐसे चलता रहेगा, बहुत काल से परिवार चला आ रहा है। तो जो व्यक्ति इस तरह से परिवार लंपट होता है, परिवार में आसक्त होता है और अपने जीवन का उद्देश्य भगवत भजन नहीं करता, खो देता है इसको, तो उसको कृपण कहा गया है। भगवान की माया में पढ़ करके वो इस प्रकार का आचरण करता है। तो गजेंद्र भी इसी तरह से थे, जो स्वयं पानी पी लिए और स्नान कर चुके, इसके बाद वे लगे स्नान कराने, सब कुछ करें भीतर श्री राम जी अपने सूंड से पानी उठा उठा करके और पिलाए, पहले सबको, सबके मुख में डालते, स्त्रियों के मुख में भी। ऐसी बात नहीं थी कि वे पानी पी नहीं सकते थे, सब जगह वो घड़ियाल थोड़े आया था वहाँ, वो मगर सब जगह नहीं था, वो चाहते तो पानी पी सकते थे, लेकिन इतना बच्चों से प्यार था कि वे न उठा पाए, और वो गजराज ही उठा करके पानी पिला रहा था। तो सैकड़ों लोग थे, उनको पानी पिलाने में उसको मेहनत पड़ रही थी, फिर भी इतना उसको सुख मिल रहा था परिवार की सेवा में, उस परिश्रम को परिश्रम गिन ही नहीं रहा था, उसको आनंद मान रहा था। उठा उठा करके पानी और पिलाया, जब पानी पिलाया ये तो किया ही, और इसके बाद पानी लेकर के सीकराम भी सीकर बना बना करके अपनी स्त्रियों को और बच्चों को स्नान कराना चालू किया। अब तो केवल पानी ही डालना है, होता देह तो मल नहीं सकते थे वो हाथनी हो चाहे हाथी के बच्चे हो, देह मलना जानते नहीं, केवल जल डालना है, शीतल करना है शरीर को। तो गजेंद्र बारी बारी से लगे स्नान कराने, कैसे चालू किए थे उसको बता रहे। स्वपुष करें भूता श्री क्राम नितानयन संस्मतयन तथा गृह घृणी करें कलभंस दुर्मत। घृणी जिसमें घृणा हो उसको घृणी कहते हैं, घृणा का अर्थ स्नेह, स्नेही गजराज स्नेह था। और सबसे पहले जिसको पानी पिलाए और स्नान कराए अपने पत्नियों बच्चों के बाद में, अगर हो सकता है संस्कृत के छंद को पूरा करने के लिए पहले करेणी शब्द का प्रयोग कर दिया गया, करेणी और कलभंस, कलभ का तो बच्चे। तो पत्नियों को पानी पिलाए, पत्नियों को स्नान कराए, तो एक एक पत्नी को स्नान कराने में उसको कम से कम 10 मिनट लगता होगा, ऐसे सैकड़ों स्त्रियां थी, बच्चे तो हजारों थे। कितना मेहनत किया हो, सुखदेव गोस्वामी इसी को कर जथा गृही, जैसे परिवार वाला गृह वाला करता है, क्योंकि बच्चों को और स्त्रियों को लेकर चलने में बहुत परिश्रम पड़ता है, लेकिन फिर भी गृहस्थ क्या करे, सब दुख सह करके उसको ये खरीद करके दो, उसको यहाँ ये खिलाओ, उसको पानी पिलाओ। गर्मी के दिन में कोई परिवार लेकर के चले तो उसको गजराज जी की याद आ जाएगी यहाँ पानी लाओ, पानी दो, ये करो वो करो, स्वयं ही बच्चों को पिलाना पड़ता है। और कभी कभी कुछ लोग तो ऐसे हैं कि स्त्री को ही स्वयं ही पिलाते हो, हाथ नहीं लगाती है, ऐसा हमने देखा है अपने आँख से। और पति और पत्नी जूता निकाली मंदिर में आने के लिए, तो पति उसको उठा कर झोला में रख लिया, पत्नी तो ईश्वर की तरह चल रही थी देखने के लिए भगवान, और पति चप्पल उठा कर रख। हमने अपने कृष्ण बलराम मंदिर में देखा था। तो जथा गृह, जैसे गृह गृह वाला व्यक्ति आसक्त होता है और अपने परिवार की सेवा में लगा रहता है,
और कितना भी परिश्रम होता है, जीवन का दिन व्यर्थ जाता है, लेकिन उस पर विचार नहीं करता है। उसकी भावना रहती है कि हमारी है, ये बच्चे हम पर डिपेंड हैं, हमारे आश्रित है, ये करना हमारा धर्म है, और भजन करना दूसरे का धर्म है ना। और जब माला जपने के लिए कहा जाएगा तो कह देंगे ये दूसरे का धर्म है, ले जाकर दूसरी जगह दे दो। इस तरह से गृहस्थ लोग भूले रहते हैं। और पत्नी की सेवा में और बच्चों की सेवा में जो कठिनाई होती है उसी को सुख मानते हैं। अगर पत्नी उठा करके एक चप्पल मार दे तो उसको तो फूल जैसा माने, वो तो ये कोई सोच नहीं लगी। ऐसे भी हैं स्त्रैण लोग इस संसार में। सेवा करनी चाहिए लेकिन अति नहीं करनी चाहिए कि ऐसा फंस जाए कि अब ये सेवा में बेचारा लगा हुआ था, सेवा में लगा था, अगर एक घंटा डेढ़ घंटा करके सेवा चला गया होता तो इसका पैर नहीं पकड़ा गया होता, लेकिन अब वो लगा अपनी मस्ती दिखाने, खड़ा होकर के जल में प्रवेश करके निर्भय और स्नान करा रहा है, ये कर रहा है, तब तक पैर पकड़ लिया है। करो परिवार की सेवा। इसी तरह से परिवार की सेवा में लोग लगे हैं, तब तक कोई हार्ट अटैक संकुच हो जाता है, लेकर के अस्पताल भागो, नौकर पकड़ लिया, लेकिन अब क्या, कितना दिन अस्पताल लेकर भागेंगे, एक दिन तो परिवार को छोड़ना ही, विदा हो जाएंगे। मनुष्य के पास वास्तव में बहुत बड़ी शक्ति है भजन करने की, आंख है, कान है, हाथ है, जिह्वा है, लेकिन इन समस्त इंद्रियों का विनियोग वो अपने परिवार की सेवा में किया है। यह बात बिल्कुल सत्य है। कुछ भक्तों को छोड़ करके बाकी आप विचार कीजिए, संसार के लिए किस काम में व्यस्त है, केवल परिवार की सेवा, परिवार का पोषण, कुटुम्ब पोषाय दियं निजाय न बुद्ध तीर्थं विहतं प्रमत्तः। प्रहलाद महाराज कहते हैं कुटुम्ब का पालन करने में ही सब लोग व्यस्त है, और जीवन का वास्तविक सुख, वास्तविक लक्ष्य विहत हो रहा है, इस पर वे विचार भी नहीं करते। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर उदाहरण देते हैं, जथा गृही, जैसे घर गृहस्थी में परिवार में आसक्त रहने वाला व्यक्ति परिवार की सेवा में लगा रहता है, उसी तरह से वह स्नेही, स्नेहवान गजेंद्र हथिनियों को और अपने बच्चों को पानी पिला रहा था, स्नान करा रहा था। स्नान एक बार करा करके सबको भेज देता था, रोज वाला स्नान कराया भेज दिया, लेकिन बच्चे कहते थे और चाहिए, और पानी चाहिए, तो 10-10, 20-20 बार, 50 बार सीकर बना रहा, ठीक है और नहाएंगे और नहाए, काम भर स्नान करा करके छोड़ देना चाहिए था पानी पिलाकर, लेकिन वो तो इसमें आनंद ले रहा था। जथा गृह तम तत्र कश्चित् मृत दैव चोदितो ग्राहो बलीयां चरणे रुषाग्रहीत् यदृच्छैवं दशमं गतो गजो यथा बलं सेति बलो विचक्रमे। इस प्रकार से गजेंद्र अपने परिवार की सेवा में लगे हुए थे, इस तरह से करते थे, कभी स्नान कराते थे, पानी पिलाते थे, और कभी फिर पानी में चले जाते थे, फिर निकलते थे, फिर स्त्रियों और बच्चों का स्नान करा रहे थे, पानी पिला रहे थे, इससे लाओ चाहिए और पियोगे और नहाओगे, तो नहाने के लिए घाम से तप्त थे ही, बहुत उत्सुक थे नहाने के लिए। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तम तत्र कश्चित् मृत दैव चोदितो, हे महाराज परीक्षित, दैव के द्वारा, ईश्वर के द्वारा प्रेरित कोई बलवान ग्राह क्रोध में चरण पकड़ लिया। यहाँ रुषा का अर्थ यह है, वो पहले नहीं पकड़ना चाहता था, लेकिन गजेंद्र का यह विहार जब देखा, निर्भयता, तो उसको सहन नहीं हुआ और वह क्रोध से चरणे ग्रहित, चरण को पकड़ लिया, एक पैर को पकड़ लिया जोश। तो पानी में रहने वाला जानवर और भी बली बहुत बलवान था। इसमें श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बली, बली का अर्थ बल वाला, महान बल वाला, और दैव सेविता का अर्थ दैव प्रेरिता, वास्तव में ईश्वर प्रेरित किया था उसको, जो साधारण ग्रह नहीं था, इसने चरणे अग्रहित, चरण को पकड़ लिया। जब चरण को अकस्मात पकड़ लिया तो एकाएक चिघाड़ा वो गजराज, अपने स्वर में, हाथी के स्वर में हाय आह किया, और इसके बाद जोर लगाया, जोर लगाए तो एक बार तो ग्रह को खींच लिया बाहर, लेकिन इसके बाद जब ग्रह अपना जोर लगाया तो
इसको पानी में जाना ही पड़ा है। जथा बलम जितनी शक्ति थी गजेंद्र में उतनी शक्ति लगा दिया अपने को खींचने के लिए जल से बाहर। अरे अति बल विचक आधी अति बल, अति बल का तो गजेंद्र में भी बहुत अधिक बल था, यह अपने बल को लगाया खींचा लेकिन नहीं खींच पाया, बाहर नहीं कर पाया। और जब चिघाड़ने लगा हाय अपने दुख को प्रकट करने लगा कि मेरा चरण पकड़ लिया, मेरा पैर पकड़ लिया, ग्राह चिघाड़ने लगा जोर से, तो उसको आतुर देख करके हथिनियां विलाप करने लगी। वो बेचारी साहस नहीं कर रही थी जल में जाने का, लेकिन वो रोने लगी। वो जानती है स्त्रियों में कम शक्ति होती है, हाथी होता है आदमी हो कोई हो, स्त्रियां विलाप करने लगी। बिचु कसुर दिन भीओ परे गदा तथा तुरंत जुथ कठिन करेणवो विकृष्ट मानम तरसा बली ऐसा बिचु कसुर दिन भीओ परे गदा पार्षिण ग्रहास तारे तुम न चाह सकते। जितनी हथिनियां थी उसकी पत्नियां सब रोने लगी विलाप करने लगी हाय 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 हाय। मतलब जो हाथी के मुख में शब्द होता है उस तरह से दुख प्रकाशक शब्दों को बोलने लगी। तो जितने भी गजेंद्र थे, गजेंद्र के समान ही बलवान हाथी जो थे, वे सब एक साथ जुट गए गजराज को निकालने के लिए। चाहे जो भी गजराज के पैर को पकड़े होंगे, एक पकड़ा होगा अपने सूंड से, दूसरा उसके पैर को पकड़ा होगा, तीसरा उसके पैर को पकड़ा होगा, इस तरह से चेन बना करके खींचने लगे हाथी, बड़े बड़े हाथी खींचने लगे। लेकिन एक ग्रह पकड़ा था और सभी हाथी हार गए, ये खींच नहीं पाए। बहुत वर्षों तक लगे रहे, गज और ग्रह का युद्ध 1000 वर्ष तक चला, ऐसा श्रीमद् भागवत में लिखा गया। और देवता लोग ये तमाशा देखते थे, ये जाते थे अपने घर विश्राम करते थे, दूसरे दिन फिर आते थे देखने के लिए। 1000 वर्ष तक तमाशा चलता रहा और परस्पर विकर्षण चालू रहा, कभी ग्रह खींचता था कभी गज खींचता था। हुआ क्या कि धीरे धीरे गजराज की शक्ति समाप्त होती गई और उसकी शक्ति बढ़ती गई, क्योंकि जल जलचर जीव था। अथवा बढ़ने का मतलब यह है कि उसका तो जीव का तो बल रहा और उनका घटने लगा, तो इसलिए उसको बढ़ना कहेंगे। ग्रह की शक्ति बढ़ती जा रही थी, विपरीत हुआ। तो वह दृश्य जब गजराज अपने को छुड़ाना चाहते हैं ग्रह के संगुल से, और जितने गज थे गजेंद्र थे बड़े बड़े, वे सब हार गए। कई वर्ष तक बेचारे लगे रहे लेकिन नहीं छुटा, तो अब क्या करे। वे भी छोड़ छाड़ करके गए जंगल में, कुछ चर लेते थे, चर करके आते थे, फिर प्रयास करते थे लेकिन नहीं छुड़ा पाए। जब गजराज नहीं छुड़ा पाए तब बेचारी हथिनियां जा करके लगी, मरता क्या नहीं करता, और सोची कि पति को ग्रह खींच रहा है और दूसरे लोग हार गए तो ये लगी खींचने, लेकिन वे बेचारी क्या खींच सकती थी। तो इस प्रकार से गजेंद्र को ग्रह खींच रहा था पानी में, पार्षणी ग्रहस्तारेतु में क्या सकन, कोई भी गजराज इस मूल गजेंद्र को बाहर करने में समर्थ नहीं है। निध्यते रेव निधेन्द्र नक्रय विकर्ष तोरंतर तो बहुर्मिथ समाह सहस्रम दिगमन नहीं कते सत्राण चित्र ममता न रहा। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं हे महाराज परीक्षित, इस प्रकार से नक्र और गज दोनों के लड़ते लड़ते 1000 वर्ष बीत गया और फिर भी दोनों सप्राण रहे, दोनों जीवित थे 1000 वर्ष तक। न ग्रह कुछ खा रहा था और न तो गजराज कुछ खा रहे थे, पानी में युद्ध कर रहे थे लेकिन फिर भी सप्राण रहे, दोनों जीवित थे। यह देख करके देवता गण भी आश्चर्य में पड़ गए। चित्रम अमन सक अमरा, देवताओं को अमर कहते हैं, देवता गण आश्चर्य में पड़ गए कि कैसे जी रहे हैं और लड़ रहे हैं। बहिरंतरतः मीठा विकर्षण, कभी ग्रह भीतर खींच ले जाता था जल में बिल्कुल, तो कभी गजराज जोर लगाते थे तो बाहर खींच लाते थे। अंतः बहि भीतर और बाहर खींच, आकर्षण विकर्षण चल रहा था। इस तरह से करते करते समा सहस्रम जगमन महीपते, हे महीपते, हे पृथ्वी के पालक महाराज परीक्षित, सहस्रम समा जगमन, सहस्र वर्ष बीत गया, ये बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। ततो गजेन्द्रस्य मनोबले जसाम कालेन दीर्घेण महानभुज्जलः, कालेन दीर्घेण, एक सहस्र बहुत बड़ा काल होता है। ग्राह तो अपने देश में था, अपने स्थान में था, और गजेन्द्र जी परदेश में थे, जल उनके लिए परदेश था। इस कारण से और युद्ध निरंतर चल रहा था, विकर्षण चल रहा था, इसीलिए गजेन्द्र की शक्ति दिन पर दिन क्षीण होती गई। तत्व बल, उनका बल चला गया, उत्साह भी चला गया, सरकार से मनोबल, मनोबल उत्साह टूट गया, इंद्रियों की शक्ति नष्ट हो गई और शरीर का बल भी चला गया। वरिष्ठ प्रकार से बल काम नहीं किया, सब कुछ व्यय हो गया। काले में दीर्घेण मनोबल जसाम, मन की शक्ति, शरीर की शक्ति और इंद्रियों की शक्ति सब व्यय हो गई, समाप्त हो गई। विकृष्ण मानस जले वसीद को, जल में बहुत दुखी थे, और जबकि जलऊ का सह ग्राहस्य सकलम विपरीतम अभूत, ग्राह का सब कुछ विपरीत हुआ, उसका मनोबल बढ़ गया, उसका शरीर बल बढ़ गया, उसकी इंद्रियों का बल बढ़ गया, और गजेंद्र का घटता जा रहा था। सकलम का अर्थ है कि सब कुछ मनोबल, इंद्रिय बल और शरीर बल ग्राह का बढ़ता जा रहा और इनका घटता जा रहा। यह भी एक दैव की अद्भुत लीला है कि ग्राह कुछ खा नहीं रहा था, फिर भी उसकी शक्ति बढ़ती जा रही और गजेंद्र की घटती जा रही, युद्ध चल रहा था। इस प्रकार से जब गजेंद्र प्राण संकट में पड़ गए और उन्होंने देखा कि बड़े बड़े गजेंद्र हमारी रक्षा नहीं कर पाए, तो बेचारी हमारी पत्नियां क्या मेरी रक्षा करेंगी, उसी समय अकस्मात उनके उनके हृदय में ये बुद्धि आई, अकस्मात उन्हें ये ज्ञान हुआ कि ये मुझे नहीं बचा सकते हैं, जो प्रभु अपने भक्तों को संकट से बचाते हैं उन्हीं को पुकारना चाहिए, अकस्मात बुद्धि आई। 1000 वर्ष तक यह बुद्धि नहीं आई थी, यदि पहले ही ये बुद्धि आई होती तो भगवान को पुकारे होते, लेकिन जब घोर संकट में पड़ गए और देखे कि परिवार का बल समाप्त हो गया, स्वजनों का बल काम नहीं किया, पत्नियों का बल काम नहीं किया और मेरा बल चला गया, तो हरे को हरिनाम, अब भगवान का स्मरण आया। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उनको यह बुद्धि प्राप्त हुई, इस प्रकार की समझ, इस प्रकार की बुद्धि आना बहुत बड़े भाग्य की बात है। वास्तव में कोई मनुष्य अपने जीवन में यह बात पहचान ले कि भगवान कृष्ण ही हमारे रक्षक हैं, हमारे बंधु हैं, हमारे अपने हैं, और अपना कहे जाने वाले लोग हमारा कुछ भी नहीं कर पाएंगे, वास्तव में कृष्ण ही सब कुछ करेंगे, तो यह बहुत बड़ा भाग्योदय है, बहुत बड़ी बुद्धि है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इत्थं गजेन्द्र सजदात संकटम प्राणस्य देही दिवसो जदुच्छया, अपारोमि आत्मविमोक्षणे चिरं दध्याविमां बुद्धिमथा व्यपद्यत। जब गजेन्द्र इस तरह प्राण संकट में पड़ गए, तब ये विचार करने लगे, दध्य, कुछ देर तक उन्होंने चित्त को एकाग्र किया, क्या बात है कि मेरा बल चला गया और मेरे समान बलशाली गजेंद्र मेरी रक्षा नहीं कर पाए, मेरी पत्नियां कहाँ से रक्षा कर पाएंगी। विचार करने लगे तो उनके हृदय में एक अद्भुत अलौकिक युक्त बुद्धि का उदय हुआ, अंडरस्टैंडिंग आई, उनके मन में बुद्धि आई, बुद्धि इमाम बुद्धि अभ्यपद्यत, यह बुद्धि ये प्राप्त किए। क्या बुद्धि थी इसका वर्णन आगे करेंगे। क्यों प्राण संकट में पड़ गया, क्योंकि देही थे, जतो देही, स्वामी जी कहते हैं बेचारा देह वाला है, जीवात्मा के लिए देह ऐसे ही भार है, दुख का स्रोत है वास्तव में, और उस पर भी वह देह जल में डूबा हुआ है, जोर लगाना पड़ रहा है, तो देह धारण करने वाला आत्मा कब तक उस देह में रह सकता है, कैसे रहेगा, तो देही था बेचारा, देह वाला, प्राण संकट में पड़ गया, विचार किया तो वह बुद्धि प्राप्त किया, अपार एवं आत्म विमोक्षण चिरम, जब देखे कि आत्म विमोक्षण है, मैं अपने को विमुक्त नहीं कर पाऊंगा इससे,
और मुझे कोई दूसरा नहीं कर पाएगा, तब उन्हें यह बुद्धि प्राप्त हुई। क्या बुद्धि?
न मामि मे ज्ञातयातुरं गदः कुतः करुण्यः प्रभवन्ति मोचितुम् ग्राहेण पाशेन विधातुरावृत।
सब कुछ वही है, वही हमें दुख से बचा सकते हैं, चाहे वही हमारे प्रिय हैं, प्रेमास्पद हैं। इस प्रकार से जब भगवान के प्रति इस भावना का उदय होता है तो इसको कृष्ण भावनामृत कहते हैं। और इस प्रकार की बुद्धि का उदय जिस कारण से वो हो, वह कारण ही प्रशंसनीय है। वास्तव इस प्रकार की बुद्धि जब तक दुख नहीं होता है तब तक नहीं होती, कोई न कोई संकट पड़ने पर ही पता चलता है। द्रौपदी भी पहले आशा कर रही थी कि भीष्म पितामह हमारी रक्षा करेंगे, या धृतराष्ट्र महाराज हमको बचाएंगे, या उनके पति बचाएंगे, और अंत में वो जान गई कि कृष्ण के अलावा मेरी लज्जा कोई नहीं बचा सकता। तो उसने पुकारा भगवान को तो भगवान बचाए। गजेंद्र भी इस निर्णय पर आ गए कि भगवान मेरी रक्षा कर सकते हैं, और इस निर्णय के साथ उन्होंने भगवान को पुकारना चालू किया। और भी भगवान के विषय में गजेंद्र के जो उद्गार हैं दो श्लोकों में दिए गए हैं, तो मैं कल उसकी व्याख्या करके और फिर स्तुति की व्याख्या प्रारंभ करूंगा। हरे कृष्णा।